आप सभी भी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, तो आप सभी का आज के इस उद्घाटन सत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। और आपके स्वागत में मैं कहूंगी, आपके आने से खुश हैं आज दोनों जहां, आज पुलकित हुआ है जन जन यहां, आप यहां आए शत शत नमन, प्रकृति भी गा उठी स्वागतम स्वागतम। आज सुबह बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी और करते हैं हम आपका कोटि कोटि अभिनंदन अभिनंदन। मैं आज के सम्मानित मंच के सभी वक्ताओं को अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आदरणीय राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी, बहन श्रीमती रेणु भाटिया जी, राजयोगिनी चंद्रिका दीदी, माननीय भ्राता आनंद पालीवाल जी, बहन श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, राजयोगिनी शारदा बहन जी, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आसीन हों। मैं पुनः आमंत्रित कर रही हूँ माननीय भ्राता आनंद पालीवाल जी, श्रीमती रेणु भाटिया जी, बहन श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, जो स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की चेयरपर्सन हैं। जब हम कोई भी कार्य का शुभारंभ करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, तो उस कार्य में ईश्वर की शक्ति भर जाती है और वो सफलता हमें मिलती है जो हम चाहते हैं। तो हम दो मिनट उस प्रभु स्मृति में अपने मन को स्थिर करेंगे।
नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार, नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार।
वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार, नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार, नारी है जगत में प्रभु शक्ति का अवतार। वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार, वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार। है सबसे बड़ी परीक्षा, ये तो गुरु है पहला कर्मों से देती शिक्षा।
कष्टों को झेल कर भी ना कभी रुकी है,
हर बाधा इसके आगे करके नमन चुकी है। जगत में प्रभु शक्ति का अवतार, वंदे मातरम बोलिए दिल से बारंबार, वंदे मातरम बोलिए।
मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारे मंचस्थीन महानुभावों का बुके और बैचेस से स्वागत करेंगे, फूलों के गुलदस्ते से और बैच लगा करके हम सम्मान और अभिनंदन कर रहे हैं हमारे माननीय वक्ताओं का, और आप सभी करतल ध्वनि से अपना सहयोग देंगे। श्रीमती संगीता बेनीवाल जी, जोरदार करतल ध्वनि, गवर्नमेंट ने तालियों पर टैक्स नहीं लगाया है और तालियां बजाने से हमारा एक्यूप्रेशर भी होता है, तो जितना जोरदार ताली बजाएंगे उतना ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी। श्रीमती रेणु भाटिया जी, आदरणीय शारदा दीदी, आदरणीय चंद्रिका दीदी, आदरणीय डॉक्टर निमला दीदी, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी भी कुछ ही समय में हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। प्रातः माननीय आनंद पालीवाल जी अगर सभा में पहुंचे हैं तो कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप मेंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से पधारे हैं। हमारे आज सम्मेलन का विषय है, उद्घाटन सत्र का विषय है, पारिवारिक सशक्तिकरण। परिवार समाज की इकाई है, मनुष्य परिवार में ही रहता है, परिवार में माता पिता से पालना मिलती है, परिवार में ही मनुष्य समाज में जीवन जीने योग्य बनता है, उसे प्रेम मिलता है, सुख मिलता है, उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। परिवार ही हमारी उमंगों को ऊंची उड़ान देता है। परिवार ही हम कहें दूसरे शब्दों में तो हमें सशक्त बनाता है, लेकिन आज स्थितियां काफी बदल गई हैं और अब हमें पारिवारिक सशक्तिकरण की बात करनी पड़ रही है। हमारे परिवार की क्या स्थितियां हैं आज, हम सब उससे अवगत हैं और उसके अनुभवी भी हैं, लेकिन आज की सभा में उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध वक्ताजन इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी के स्वागत अभिनंदन के लिए पुनः एक बार हमारे मधुर वाणी ग्रुप के भाई सतीश भाई, गोविंद भाई एवं उनके साथी, आपके लिए एक बहुत ही मधुर और उमंग उत्साह प्रेरणा से भरा हुआ गीत लेकर के हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। सतीश भाई, गोविंद भाई, आप यहाँ समर्पित रूप से वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय सतीश भाई हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आप गीतकार हैं, संगीतकार हैं, कहेंगे बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं। सर्व प्रकार की सेवाएं आप इस महायज्ञ में अपनी प्रदान करते हैं। माननीय भ्राता आनंद पालीवाल जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ आपका भी गुलदस्ते एवं बैचेस से स्वागत करें। आप सभी बहनें करतल ध्वनि से सहयोग देंगे।
ज्ञान सरोवर का पावन प्रांगण और ये मौसम और इसमें शिव शक्तियों का मातृ शक्तियों का आगमन अद्वितीय है, अद्भुत है। शिव शक्ति के अवतार का आ गया मौसम, संसार के उद्धार का आ गया मौसम, सशक्तिकरण परिवार का आ गया मौसम, प्रभु प्यार की फुहार का आ गया मौसम, आपके स्वागत और सत्कार का आ गया मौसम। स्वागत।
अवतार का आ गया मौसम, शिव शक्ति के अवतार का आ गया मौसम, संसार के उद्धार का आ गया मौसम, सशक्तिकरण परिवार का आ गया मौसम, प्रभु प्यार की फुहार का आ गया मौसम, स्वागत और सत्कार का आ गया मौसम, स्वागत और सत्कार का आ गया मौसम। संसार की पतवार है, परिवार की नारी हुई नारी सबकी आधार है, नारी के सम्मान की खुद नारी जिम्मेदार है, संसार है मझधार में करना बेड़ा पार है, सब पे करने उपकार का आ गया मौसम, शिव शक्ति के शिव शक्ति के अवतार का आ गया मौसम, संसार के उद्धार का आ गया मौसम। नारियां बनकर ब्रह्म कुमारियां पवित्रता सुख शांति से सींच रही जग प्यारियां, मूल्यों से महकाइए परिवार की फुलवारियां, जगदम्बा बन दूर करो दुनिया की दुश्वारियां, अब देवियों के दीदार का आ गया मौसम, शिव शक्ति के शिव शक्ति के अवतार का आ गया मौसम, संसार के उद्धार का आ गया मौसम।
आपकी तालियां आपकी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, बहुत खुशी का अवसर है, स्वयं विधाता प्रसन्न हो रहा है।
बंधन को खुले गगन में आइए, एक नहीं विश्व को अपना परिवार बनाइए, आध्यात्मिक का राजयोग को जीवन में अपनाइए, शिव से शक्ति पाइए शिव शक्ति बन जाइए, आपके जय जयकार का आ गया मौसम, शिव शक्ति के
शिव शक्ति के अवतार का आ गया मौसम, संसार के उद्धार का आ गया मौसम, सशक्तिकरण परिवार का आ गया मौसम, प्रभु प्यार की फुहार का आ गया मौसम, स्वागत और सत्कार का आ गया मौसम, स्वागत और सत्कार का आ गया मौसम।
बहुत खूब, शिव शक्ति के अवतार का आ गया मौसम। कहते हैं कि जब नारी शिव से जुड़ जाती है तो वो शिव शक्ति हो जाती है, और जब वो शिव शक्ति हो जाती है तो केवल अपने परिवार का कल्याण नहीं करती लेकिन वो जन जन का कल्याण करती है। तो आपके स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ कुमारी दिया और कुमारी अभिरति को। वो पुनः आपके सामने एक नृत्य लेकर आ रही हैं, जन जन का कल्याण करे तू शिव की शक्ति है नारी।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी की तपस्वी भूमि में महिला प्रभाग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है।
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, समस्तस्य नमस्तस्य नमस्ते
से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी जो कविता कली कहानी बन जाती, जिसकी एक करवट वक्त को बदल जाती, जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी।
हे नारी, अब तुम्हें स्व की शक्तियों को पहचान, स्व परिवर्तन से परिवार का तथा जन जन का कल्याण करना है।
शिव की शक्ति है नारी, जन जन का कल्याण
बहुत सुंदर कुमारी दिया, कुमारी अभिरति हमारे माननीय मुख्य अतिथि थी। आप दोनों का सम्मान कर रहे हैं फूलों का गुलदस्ता देकर के। और आज सम्मेलन के इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय चक्रधारी दीदी जी को। आप 63 वर्षों से समर्पित रूप से इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप दिल्ली शक्ति नगर एवं संबंधित सेवा केंद्रों की संचालिका हैं। रशिया एवं बाल्टिक देशों के 50 से भी अधिक सेवा केंद्रों के आप डायरेक्टर हैं। आप बहुत ही कुशल अनुभवी वक्ता हैं और आपकी मधुर वाणी सबके हृदयों को छू लेती है। आपने पांचों ही महाद्वीपों में यात्रा करके इस ज्ञान का प्रकाश चहुं ओर फैलाया है। लाखों का जीवन आपके ज्ञान के प्रकाश से रोशन हुआ है। आप महिला प्रभाग की भी अध्यक्षा हैं। महिला प्रभाग के सभी कार्यक्रम आपके निर्देशन में ही संपन्न होते हैं। आपके लिए मैं कहूंगी, आप की वाणी मिटा देती है हर तम, आपकी मुस्कान हर लेती है हर दिल का गम, उमंग भर देती है आपकी रूहानी नजर हर दिल में, किसी फरिश्ते से आप नहीं हैं कम। आदरणीय चक्रधारी दीदी जी, आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी भी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ राता जी का गुलदस्ते एवं बैजेस से स्वागत करेंगे। आप जोरदार कर्तन ध्वनि से हमारे भाई जी का और हमारे मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन करें।
ओम शांति। मंचासीन आदरणीय राजयोगी भ्राता ब्रजमोहन जी तथा उपस्थित महान विभूति हमारे अतिथिगण श्रीमती रेणु भाटिया जी, श्री ऑनरेबल आनंद पालीवाल जी और श्रीमती संगीता बेनीवाल तथा मेरी राजयोगिनी बहने व उपस्थित सभी आदरणीय मेहमान कहूँ या घर के कहूँ, आप सभी महान विभूतियों का आज इस महान कार्यक्रम के इनॉग्रल फंक्शन पर मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसका विषय ही है किस प्रकार महिलाएं अपने परिवार को सशक्त बना सकती हैं, या कहेंगे पारिवारिक सशक्तिकरण। हम सबको मालूम है कि जब घर स्वच्छ किया जाता है तो स्वच्छ करने के पश्चात जो भी घर की चीजें हैं उन्हें उचित स्थान पर रख दिया जाता है। और अगर कोई चीज उचित के साथ अनुचित भी हो तो वे अच्छी नहीं लगती है। ठीक इसी प्रकार जीवन को सुख और शांति संपन्न बनाने के लिए भी जीवन में हर प्रकार के मूल्यों की आवश्यकता है। अगर इन मूल्यों के साथ कुछ जीवन को निरर्थक बनाने वाले ऐसे अवगुण प्रवेश हो जाते हैं तो जीवन के मूल्य निरर्थक ही कहला जाते हैं। जैसे कि सुंदर घर में सजावट का सामान तो सब है, बड़ा अमूल्य सामान रखा है, लेकिन उनके साथ कुछ बेकार सामान भी पड़ा हो तो कहने में आता है चीजें तो बहुत अच्छी थी लेकिन अच्छी नहीं लग रही थी। ठीक इसी प्रकार अगर जीवन में भी मूल्यों के साथ कुछ विकृत भावनाएं भी होती हैं तो वे जीवन अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसा समझती हूं कि घर परिवार को सुखद बनाने के लिए घर परिवार के वातावरण को श्रेष्ठ बनाना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई मनुष्य कह देता है कि भी मेरी कुछ बोलने की ज्यादा आदत है या कुछ ऐसा वैसा शब्द मुख से निकल जाए तो कृपया बुरा नहीं मनाना। ठीक है, जवान गीली है, फिसल सकती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि फिसलती को फिसल नहीं दिया जाए। मान लीजिए मेरे किचन या बाथरूम में कुछ ऐसी चीज गिर गई जो फिसलने वाली है और कोई भी वहां जाता है तो पांव फिसल सकता है, उस जगह को साबुन सर्फ डाल करके स्वच्छ किया जाता है ताकि कोई फिसले ना। और अगर किसी संस्कार को देखकर कोई ये कह दे कि मेरा ये स्वभाव है, वास्तव में देखा जाए इस प्रकार का स्वभाव घर के वातावरण को दूषित कर देता है। जब हम कहते गृहस्थ आश्रम है तो आश्रम का अर्थ ही है जहां आपस का प्रेम और प्यार हो, जहां मन की स्वच्छता हो, जहां एक दो के प्रति सहयोग की भावनाएं हो, जहां खान पान की शुद्धि हो और आचार विचारों की श्रेष्ठता हो। अगर ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं तो उस घर को आश्रम नहीं कह सकते हैं। इसलिए मैं कल भी सुना रही थी कि आज आश्रम अलग बन चुके हैं और घर अलग बन चुके हैं, क्योंकि घरों का वो वातावरण नहीं रहा है। पहले घरों में बड़ों के प्रति सम्मान की भावनाएं, छोटों के प्रति स्नेह की भावनाएं, ये सब कुछ विराजित थी, लेकिन आज धीरे धीरे ये चीजें दूर होती जा रही। जिस पर मैं सुन रही थी एक एग्जाम्पल था कि किसी की बहू आई और नई नई बहू आने के कारण सास ने कहा, बिटिया ये सब काम तुम शुरू कर रही हो, ये काम तो मैं ही कर लूंगी, अभी तुम नहीं आई हो, अभी तुम आराम करो। सास ने जिम्मेवारी घर के काम की ले ली और बहू ने टेलीविजन पर बैठकर और घूमकर अपना समय व्यतीत करती रही, परंतु काफी लंबा समय हो गया, बहू ने पुनः सास से पूछा ही नहीं। कि माता जी मैं भी कुछ काम में हाथ बटा दूं। तो सास ने अपने बेटे को कहा कि बेटा बहू को कहना कि थोड़ा सास माँ के साथ हाथ बटा दो। तो बेटे ने कहा मैं डायरेक्ट तो नहीं कहूंगा, आप काम करेंगे तो मैं आपको काम नहीं करने दूंगा और उसके सामने यही कहूंगा मुझे दीजिए ये मैं करूंगा। तो उसने कहा जैसा भी तुम समझो। कहते सास झाड़ू लगा रही थी तो बेटे ने कहा मम्मी ये आपकी एज झाड़ू लगाने की है, बहुत झाड़ू आपने लगाए, प्लीज मुझे दीजिए झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा ये मैं लगाऊंगी। वो कहे मैं लगाऊंगा, वो कहे मैं लगाऊंगी। बहू देख रही थी ये दृश्य। बहू ने कहा झगड़ा क्यों करते हो, एक दिन मम्मी लगा लेगी एक दिन आप लगा लेना। अब देखिए माँ ने बेटे को कहा और बेटे ने युक्ति रची, लेकिन बेटी शिक्षा लिए हुए थी नहीं। जो निपटारा करते हुए माँ और पति को काम करने के लिए कह दिया और स्वयं निवृत्त हो गई। तो घरों के कुछ वातावरण ऐसे बनते जा रहे हैं और हम समझते हैं जैसी वृत्ति होती है वैसा ही वातावरण होता है। अगर घर में तू 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 मैं जोश आवेश क्रोध आक्रोश अगर इस प्रकार का वातावरण होगा तो घर सुखद प्रतीत नहीं होगा। आपको ये अनुभव होगा कि कई घरों में बहुत अमूल्य चीजें रखी होती हैं, वर्तमान समय की सब फैसिलिटी उस घर में आपको मिलेगी। आप गए हैं नौकर के द्वारा उन्होंने काफी प्लेटें आपके सामने सजवा दी हैं, आपकी आव भगत कर दी गई है, लेकिन आपको ज्यादा समय वहां बैठने का मन नहीं होता है। कारण क्या होता है? चीजें तो सब हैं परंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में वो स्नेह नहीं, वो प्यार नहीं। घर के वातावरण में एक दो की समीपता या एक दो के प्रति हमदर्दी की भावना नहीं है। और एक वो भी घर है जो बड़ा सिंपल है, बड़े सादा है, दिल चाहता है वहां थोड़ी देर बैठे और बैठे। तो मैं ऐसा समझती हूं कि हमारी वृत्ति घर के वातावरण को श्रेष्ठ बनाने के लिए बड़ी श्रेष्ठ और सतोगुणी चाहिए। कोई बात हो भी जाती है तो उसको ज्यादा लंबा ना ले लें, ऐसी वैसी घटना को समा दिया जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अपने घर के वातावरण को तो शायद कहने कहाने से ठीक हो भी जाए, लेकिन जो घर में टेलीविजन रखा है, जो हर समय हाथ में फोन थमा हुआ है, उसके अंदर कुछ इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद दिखाते हैं कि अपने घर को तो हमने ठीक किया लेकिन बाहर की लड़ाई झगड़े के वातावरण को हमने घर में प्रवेश कर दिया तो घर का वातावरण कैसा होगा। फिर हम कहते हैं पता नहीं आज बच्चे घर में टिकना नहीं चाहते, घर में मन नहीं लगता। मन ना लगने का कारण क्या है? घर के वृत्ति से वातावरण बनता है। और अपने आप से पूछा जाए हमारी स्नेह की और प्यार की वृत्ति कितनी है। मान लीजिए कोई मनुष्य आपको कोई बात कहता है और आपको मालूम है कि कई बार ये निरर्थक सी बात कहता है, आप उसकी बात शुरू होते ही कह देते हो हाँ हाँ मुझे मालूम है, ज्यादा लंबा नहीं करो, मुझे पता है क्या कहना है आपने, जल्दी से समाप्त कर लो। ऐसे समय पर हम मन में किसी के प्रति अपने भाव को बिठा न ले। अगर आप शांति और प्रेम से उनकी बात सुनते हैं, हो सकते हैं आपकी शांति और प्रेम के प्रकंपन उनकी बात को सुंदर लहजे से पेश कर सकेगी, क्योंकि किसी भी मनुष्य के परिवर्तन होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। कोई कितनी भी जल्दी परिवर्तित हो जाता है, हमारे सामने वाल्मीकि जी का एग्जाम्पल है ना, क्या जीवन था, डाकू जीवन था, और किस प्रकार राहगीरों को लूट करके छीन झपट करके धन इकट्ठा करते थे, और जब चार साधुओं को लूटा तब उन्होंने कहा कि ये सब किसके लिए करते हो, और जब उन्होंने उत्तर दिया मैं बाल बच्चों के लिए करता हूं, तो कहा जाओ बाल बच्चों को पूछ कराओ, आपके कर्मों की वो गवाही देंगे। हमें इस दुपट्टे के साथ पेड़ से बांध जाना, लेकिन तुम घर में पूछ कर आओ। और जब पूछने गया तो पत्नी बच्चों ने कहा हमको भोजन चाहिए, रहने का स्थान चाहिए, हम ये नहीं कहते लूटो और खसूटो, हमें धन चाहिए, हमें साधन चाहिए जो आवश्यकता के हैं, हम ये नहीं कहते किसी को मारो और काटो। जब उन्होंने ये सुना तो मन में वैराग्य आया, कितना सब कर्म मैं किसके लिए करता हूं, जिनके लिए करता हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें ऐसा धन नहीं चाहिए। तो कहा उस समय वाल्मीकि जी ने सब कुछ तिलांजलि देकर के संतों को कहा कि मैं आपके साथ ही चलूंगा, अब मुझे इस दुनिया से कुछ काम नहीं। और उनके अंदर छिपी हुई जो योग्यताएं थी, इतना सुंदर रामायण ग्रंथ लिख डाला। आज वो एपिक सारे विश्व में अनेक भाषाओं में जिसकी टीका होती है। बहुत सी श्रेष्ठताएं मनुष्य में छिपी हुई होती हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता उन छिपी हुई विशेषताओं को उजागर करने का। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि घर परिवार में आपस में स्नेह और प्यार होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये स्नेह और प्यार ना होने का एक कारण एडजस्टमेंट। आज कोई किसी से एडजस्ट नहीं होता, हर एक समझता है मेरे से दूसरा एडजस्ट हो, मुझे एडजस्ट नहीं होना। अपनी सुविधाओं को प्राथमिकता देना, अपनी आवश्यकताओं को आवश्यक समझना, अपनी जरूरत को पहला स्थान देना और दूसरे की किसी भी बात को न सुनना, क्या इससे घर का वातावरण बन सकता है? ठीक है, आपने बात बहुत अच्छी कही है, लेकिन आपकी बात दूसरों को मंजूर नहीं है, तो आप अपनी बात का औचित्य बता दीजिए कि मेरा कहने का ये भाव है और इससे ये परिणाम निकल सकता है। लेकिन बार बार बताने के बावजूद भी दूसरा अपनी ही बात को महत्व दे रहा है, तो कुछ समय के लिए साक्षी बन जाइए, औचित्य बता दीजिए लेकिन फिर साक्षी बन जाइए। क्योंकि घरों को आपस में जोड़ना है, घर को तोड़ना नहीं है। अगर ये लक्ष्य हो जाएगा कि हमें घर को संजोना है, घर को डुबोना नहीं है, तो जरूर है कि एक दो की बात को सुनते हुए समाने की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, एडजस्ट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी, उसे समाज में विचरण करना है, कहीं बैठना है, कहीं उठना है, कहीं से कुछ चीज खरीद करनी है। अकेले तो जीवन कोई यापन नहीं कर सकता है। अगर उसने अपने क्रोध या आवेश के स्वभाव को नहीं बदला और अपने घर परिवार से किनारा कर लिया, तो आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति किसी दुकानदार से चीज लेने जाएगा तो वहां भी लड़ाई झगड़ा करेगा। अगर कुछ काम किसी से कराना होगा तब भी अपना आवेश या जोश नहीं त्याग सके। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना वो जीवन यापन नहीं कर सकता है, तो क्यों नहीं अपने परिवार से थोड़ी बात सुन भी ले जाए और थोड़ा सा सहन कर भी लिया जाए तो क्या हर्ज है। सहन करना भी एक प्रकार का वो गोंद है जो दो रिश्तों को जोड़ देती, और सहन करना सरल नहीं होता है। सहन करना एक शक्ति है, ये हर एक के वश की चीज नहीं। अगर आप में ये शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग कीजिए, लेकिन ये ख्याल रहे कि मुझे घर को बिखरने नहीं देना, इस घर को संजोना और घर को बना के रखना, इस चीज की बहुत ख्याल रखना है। आज हम देखते हैं कोई बुजुर्ग होता है तो बड़े सहज में कह देते हैं इनको बुड्ढा घर में भेज देते। जिसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक घर में एक परिवार है और दो बच्चे हैं। पत्नी अपने पति को कहती है, ये देखिए बच्चों की पढ़ाई है, और पिताजी रात को खांसते हैं, बार बार लाइट चलाते हैं, मेरी भी नींद खराब होती है, बच्चों की पढ़ाई में दखलंदाजी होती है, क्यों नहीं पिताजी को ओल्ड एज होम में रख दें और जो हमको चाहिए हम वहां पहुंचा दें। तो पति को बात तो अपील की, लेकिन कहा किसी मौके पर मैं पिताजी से बात करूंगा, लेकिन पिताजी ने ये बात सुन ली थी। कुछ दिनों के पश्चात पिताजी ने कहा, बेटा मुझे एक बात करनी थी आपसे। और बेटे ने कहा, पिताजी मुझे भी आपसे एक बात करनी। दोनों बैठ गए और पुत्र ने कहा, पिताजी पहले आप बोलिए। पिताजी ने कहा, बेटा मैं बुजुर्ग हो रहा हूं, कई बार रात को मुझे उठना पड़ता है, बच्चों की इस दखलंदाजी के कारण हो सकता है उनको कष्ट होता, और तुम्हारी पत्नी भी सारा दिन काम करके थकी होती है। तो बेटा तो बड़ा खुश हो रहा था, मेरे मन की मुराद पिताजी दे ही रहे। तो पिताजी ने आगे कहा कि बेटा मैं ये समझता हूं कि इस घर को मैं ओल्ड एज होम बना दूं, जिसमें मैं अपना बुढ़ापा खुशी से व्यतीत कर सकूं और आप अपने रहने का प्रबंध कहीं और कर लेना। आप बेटे को सुनकर पांव तले धरती निकल गई कि ये पिताजी ने क्या कह दिया। आप सोचिए वो समय था जब घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, कहानियां सुना सुना करके पोते पोतियों का कितना मस्तिष्क श्रेष्ठ बना देते थे। मुझे आज तक याद है जो हमारे दादा हमको सुनाया करते थे, और वो कहानियां वो किस्से जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहयोगी थे। तो मैं ऐसा समझती हूं कि घर परिवार को बनाए रखना बहुत जरूरी है, एक दो को सम्मान देना बहुत जरूरी है। ठीक है कोई मनुष्य ठीक नहीं है तो सावधान अवश्य रहिए, लेकिन सदा उसके लिए मन में ये भावना ना रख लीजिए कि ठीक ही नहीं। मनुष्य की भावनाएं बहुत बड़ा काम करती हैं। अगर आपकी श्रेष्ठ भावना है तो श्रेष्ठ चीज भी आपके सामने श्रेष्ठ बन के आएगी। इसलिए ही तो आज लोग अगर अपनी मनोभावनाओं को श्रेष्ठ नहीं बना पाते हैं तो घर में कीर्तन सत्संग कथा रख लेते हैं, चलो कोई आकर हमारे घर के वातावरण को ऐसा श्रेष्ठ बना दे। तो जहां घर की सफाई सुथराई की आवश्यकता है, घर की सजावट की आवश्यकता है, वहां जीवन के मूल्यों की भी आवश्यकता है। और आज समय है अपने जीवन को एक रोल मॉडल बनाने। हम ये नहीं कह सकते कि मुझे अकेले से क्या होगा, एक मूर्ति इतनी बड़ी बिल्डिंग को मंदिर कहलवा सकती है, एक अगरबत्ती सारे वातावरण को शेष सुगंधित कर सकती है, तो क्या मैं चैतन्य जो कि इन चीजों की रचता हूं, क्या मेरे में यह समर्थ नहीं कि मैं अपनी श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ मनोस्थिति से अपने परिवार को श्रेष्ठ बना सकूं? हम कहते हैं हमारी किसी को कदर नहीं है। हम स्वयं से पूछें, मुझे स्वयं की, स्वयं को कितनी कदर है? कभी ना ये समझिए कोई हमको कष्ट देता है, कोई हमको कष्ट नहीं दे सकता है। हमारे निज के कर्म हमें सुख देते हैं और निज के कर्म हमको दुख देते हैं। इसलिए कहा गया है, आत्मा अपना मित्र आप है, अपना शत्रु आप है। किसी को शत्रु की निगाह से ना देखिए। कहने में आता है कि फलाने मुझे ऐसा किया है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं ऐसा करने की अगर आपका कोई कर्म ऐसा ना होगा। हाँ, ये जरूरी है कि सभी कर्मों का फल तत्काल नहीं मिलता है। कुछ कर्म हमारे जमा खाते में रह जाते हैं, संचित होते हैं। उसका फल मुझे आज नहीं मिला, लेकिन कभी मिलेगा, चाहे वो बुरा है या अच्छा है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन परिणाम हमको बहुत बुरा मिला। तब हम कहते हैं आज की दुनिया में बुरा मनुष्य फला फूला है, भला मनुष्य तो दुखी रहता है। कभी ना ऐसा सोचिए, जब आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तब आपके किसी समय के किए हुए बुरे कर्म का बीज फूट गया। ये कोई इंसिडेंट है कि आप अच्छा कर्म कर रहे थे, लेकिन पूर्व का किया हुआ कर्म, उसका बीज फूटने के कारण आपको फल या दंड के रूप में मिला, और आपने जो श्रेष्ठ कर्म किया वो आपका संचित है, कहीं जाएगा नहीं। तो ख्याल रखिए, अपने घर को सुंदर आश्रम बनाने का जिम्मेवारी मैं ले सकती हूँ, ऐसा समझ करके आप अकेला हूं ना कहना। आप अकेला बहुत महान हो। पत्थर की प्रतिमा एक मंदिर बना सकती है, क्या मैं चेतन अपने घर को एक आश्रम नहीं बना सकती? कभी अपने को असमर्थ नहीं समझना। और मैं ऐसा समझती हूँ, जो यहाँ आप राज्यों की शिक्षा ले रहे हैं, उस योग के द्वारा जब सर्वशक्तिवान से आत्मा का कनेक्शन जुटता है और आत्मा को सर्वशक्तियां प्राप्त होती हैं, उन शक्तियों के आधार से उसकी कमजोरियां दूर होती हैं और नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी बन जाती। ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चक्रधारी दीदी जी का। आपने बहुत ही सुंदर उदाहरणों के द्वारा हमें परिवार को सशक्त बनाने के लिए बहुत प्रेरणादायी टिप्स दिए। हमारे परिवार का माहौल सात्विक होना चाहिए, क्योंकि सात्विक माहौल में ही बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं। हमारी मनोभावनाएं शुभ भावनाएं हों और हम घर को आश्रम बनाएं, मंदिर बनाएं, ये हम पर ही निर्भर करता है। तो ये देखने में आता है कि बच्चों को आज घर में जो माहौल हम देते हैं, वैसे ही वो बनते हैं, या जैसा आचरण हम करते हैं वही बच्चे भी करते हैं। अगर हम लड़ाई झगड़े का माहौल देते हैं तो बच्चे भी वही सीखते हैं। छोटी छोटी बातों में आपस में गुस्सा करना या नाराज हो जाना, आपस में बातचीत बंद कर देना, अगर बच्चे ये देखते हैं तो वही आपसे सीखते हैं। अगर वो देखते हैं घर में आलोचना का माहौल है, सास बहू की निंदा करती है, ननद भाभी की आपस में, या देवरानी जेठानी, तो बच्चे भी वही सीख लेते हैं। अगर घर में सहनशीलता का माहौल है, जैसे दीदी ने कहा कि हम सहन करें और रिश्तों को संजो कर रखें, उसमें एक शक्ति है, तो वो बच्चे भी वही धैर्य सीखते हैं अपने जीवन में। अगर हम बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, प्रशंसा देते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो जीवन में सफल होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि संस्कार मॉल में नहीं मिलते, घर के माहौल में मिलते हैं। और अभी अभी मैं वक्तव्य के लिए अनुरोध कर रही हूँ श्रीमती रेणु भाटिया जी से। आप हरियाणा की स्टेट विमेन कमीशन की चेयरपर्सन हैं, आपने हरियाणा में ही विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आप सन 1992 से 2000 तक न्यूज एंकर रही हैं दिल्ली दूरदर्शन में, और आपने दूरदर्शन के लिए ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनाई हैं सोशल कॉजेस को लेकर के, और आपने बेंजीर भुट्टो का रोल भी प्ले किया है। और पूर्व में जो राजनीतिक पद आपके रहे हैं, आप डिप्टी मेयर फरीदाबाद रही, फरीदाबाद में ही म्यूनिसिपल काउंसलर रही, हरियाणा स्टेट की आप महिला मोर्चा वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, महिला मोर्चा जनरल सेक्रेटरी भी रही हैं, लघु उद्योग प्रेसिडेंट रही हैं, फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर रही हैं, बीजेपी हरियाणा की आप 2014 से 2021 तक स्पोक्स पर्सन भी रही हैं, और खासकर आप वंचित महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं और समाज में आप लैंगिक समानता को प्रमोट करती हैं। तो मैं आपके लिए कहूंगी, आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, और हौसले हैं अगर बुलंद तो फिर सफलता और मंजिल तुमसे दूर नहीं। तो आप सदा ही अपने हौसलों की उड़ान से आगे बढ़ती रही हैं, और सभी में भी आप हौसला बढ़ती हैं। तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी प्रेरणाएं सबके सामने रखें।
बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य मंच पर आसीन हमारे दाता, हमारे को सिखाने वाले हमारे बड़े भाई पिता तुल्य भाई ब्रिजमोहन जी, मंच पर आसीन हमारे मार्गदर्शन करने वाली हमारी बहनें शारदा दीदी, चंद्रिका दीदी, चक्रधारी दीदी और डॉक्टर निर्मला दीदी अभी पहुंची नहीं है मेरे साथ। मंच पर आसीन गवर्नमेंट से राजनीतिक पदों पर विराजमान आनंद पालेवाल जी, मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन, और मेरी साथी संगीता बेनीवाल, चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स। आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, वंदन करती हूँ, और खास तौर से ब्रह्मा कुमारी आश्रम की सभी बहनों को। और मैं फरीदाबाद से आती हूँ तो मेरे फरीदाबाद आश्रम की प्रीति दीदी मेरे साथ आई हैं, आश्रम की अन्य सभी बहनों को जिन्होंने मुझे एक स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने का ये मौका दिया, मैं आपका सबका वंदन करती हूँ। दो दिन से यहाँ पर रहकर ऐसे लग रहा था, मुझसे आज सुबह नाश्ते के समय एक दीदी ने पूछा, घर की याद आई, शारदा दीदी ने पूछा, तो मैंने कहा कि दो दिन से बच्चे फोन कर रहे हैं, मैं उनको भी कहती हूँ थोड़ी देर में करती हूँ बेटा, थोड़ी देर में करती हूँ बच्चे बात करती हूँ, इतना अच्छा यहाँ वातावरण है। और संगीता जी, आनंद जी जानते हैं कि हम लोगों की लाइफ कैसी है, एक सेकेंड भी हम लोग किसी ना किसी केस के बिना नहीं रह पाते हैं, कोई ना कोई इस तरह से केसेस आते हैं कि हम उनमें उलझे रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। कल चक्रधारी दीदी को सुना, मन के बहुत सारे वहम, बहुत सारी दिक्कतें दूर हुई। मैं ट्रेन में रास्ते में प्रीति दीदी को कह रही थी कि मुझे बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में, तो दीदी ने कहा वहां इतनी ऐसी ऐसी बहनें आपको मिलेंगी, जब वो अपना उद्बोधन रखेंगी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर उसी में होगा। और बिल्कुल दो राय नहीं, जो जो प्रश्न मन में थे, जो जो दुविधाएं मन में थी, वो सारी कल से बहुत सारी हल हुई। और मुझे लगता है अभी इन चार दिनों में मुझे लगता है बिल्कुल ब्रेन वॉश करके और दुनियादारी के उन अलूल फजूल उलझनों को यहां पर हम दबा कर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे माहौल के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी हमें इस तरह का मौका देते रहें कि आपकी शरण में हम बहुत कुछ सीखते रहें, ऐसा मौका आप हमें देते रहिएगा। आज का विषय या इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा दीदी ने बनाई, फैमिली एम्पावरमेंट, सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर मुझे लगता है फैमिली एम्पावरमेंट को अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट कह दें तो कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि किसी भी फैमिली को मजबूत करने का कार्य उस परिवार की महिला करती है। और कल से भी जब से चर्चाएं कर रहे थे, कल हमारी एक साथी और भी थी यहां पर गुजरात से आई हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग होम मिनिस्टर्स होते हैं, हमें कोई लालच नहीं राजनीति में होम मिनिस्टर बनने का, क्योंकि हम ऑलरेडी होम मिनिस्टर्स हैं, बॉर्न होम मिनिस्टर्स हैं। ये बहुत उन्होंने बड़ी अच्छी बात को कहा, अगर इसको विस्तार से हम सोचें समझें तो बहुत गहराई है इस बात में। जब हम फैमिली बाइंडिंग्स की बात करते हैं, मैं कुछ अपनी जिंदगी के पन्ने आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। 54 साल की इस जिंदगी में मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी बाधाओं को देखा है, परंतु बाबा का इतना आशीर्वाद रहा कि जैसे ही कोई हर्डल आता था तो दीदी वाली बात है, चक्रधारी दीदी वाली, कि फिसलने वाली जगह में कोई ना कोई कह देता है, बाबा की आवाज गूंज पड़ती है, बेटा ध्यान से पैर रखना, फिसल ना जाओ। तो एकदम जब जब कष्ट आए, जब जब कठिनाइयां आई, 7 वर्ष की आयु में अपने माता पिता को मैंने एक एक्सीडेंट में खोया। 7 वर्ष से लेकर विवाह तक का जो जीवन था एक बेटी के लिए कैसा होता है। कल परसों मैं एक कार्यक्रम में थी जिस कार्यक्रम का नाम था द रेड डॉट। हम बहुत कम मंचों से इस तरह की बातें करते हैं। द रेड डॉट मीन्स जब एक बच्ची 12-13 साल की, 11 साल की उम्र में कदम रखती है और जब उसका पहला मासिक धर्म शुरू होता है, उस समय उसको किस तरह के कष्ट होते हैं, वो किस से अपनी बात रखे, किसको कहे और आगे कैसे बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट था। जब इस विषय पर मुझे बुलाया गया तो मुझे अपना बचपन याद आया, क्योंकि 7 वर्ष की आयु में मां नहीं थी, 11 वर्ष की आयु में जब इस मासिक धर्म को देखना पड़ा, जब ये मेरे जीवन में आया तो कोई समझाने वाला नहीं था कि कैसे तुम्हें अपने आप को संभालना है ऐसी स्थिति में। तो पग पग पर किस किस तरह के कष्ट एक महिला को आते हैं, एक बेटी को आते हैं, और मेरे जैसी कितनी हजारों बेटियां ऐसी होंगी जिनको हर पग पर अपनी मां की उंगली पकड़ने की आवश्यकता होगी। जब मैं सुबह इस हॉल में आई तो एक मां को लेकर गाना चल रहा था कि मां तू कितनी कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, सारा। तो मेरे पीछे एक परिवार बैठा है, अभी भी बैठे हुए हैं, उनका बच्चा जब कूद रहा था तो उसकी मां ने उसे गले लगा लिया, और मैं ये दृश्य देख रही थी कि उस महिला को उस गाने ने कितना अट्रैक्ट किया कि उसने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया। बहन अभी बैठी भी हुई है। कहने का अभिप्राय ये कि मां, बहन, महिला, एक कहने को हिंदी या इंग्लिश का एक अनुवाद जरूर हो सकता है, लेकिन ये दूर दराज एक ऐसा रिश्ता है जिससे अपने घर को भी बांधा जा सकता है, परिवार को भी बांधा जा सकता है, देश को, समाज को भी बुन के रखा जा सकता है। अभी वक्तव्य में एक बात आई, मेरे 3 भाई बहुत अच्छा संगीत कर रहे थे, कल भी उन्होंने बहुत अच्छा संगीत किया, उसमें एक लाइन आई कि नारियां अपनी जिम्मेदार खुद है। बड़ी गहराई है इस बात में अगर आपने ध्यान से सुना हो। ऑफकोर्स हम अपनी जिम्मेदार खुद हैं, अच्छा बनना है समाज में, अच्छा नाम लेना है, समाज को अच्छा बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें उस जिम्मेदारी को निभाना होगा। और हम कैसी हैं, हमारा खुद का स्वभाव कैसा है, खुद का चाल चलन कैसा है, खुद का रहन सहन कैसा है, ये समाज को राह दिखाने से पहले हम पर निर्भर करता है। अगर हमारी ये ब्रह्म कुमारी दीदियां खुद पे संयम ना रखें, खुद इतनी शिक्षा हासिल ना करें, इतने एग्जाम्पल्स से भरी हुई जीवनियां हमें ना समझाएं तो हम कहेंगे खुद पता नहीं, हमें बता रही हैं। लेकिन एक एक शब्द इन बहनों का सुनो जब आप। मेरे पति एक बात कहा करते थे कि कभी भी ब्रह्मा कुमारी दीदी को देखेगी ना नूर झलकेगा, तो मुझे समझ नहीं आता था वो बार बार ये बात क्यों कहते थे। अब मैं जैसे जैसे इनके करीब आती हूं तो मैं ये देखती हूं वाकई हर एक में एक अलग नूर है, हर एक की एक अलग पहचान है, हर एक की एक अलग क्वालिटी है। और एक संपूर्ण महिला को समाज के लिए, परिवार के लिए अगर कोई गुलदस्ता बनना है समझ का, परिवार को बांधने का, तो किसी एक एक दीदी के पास एक एक घंटा बैठकर देखिए। आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी किताबें पढ़ने की, किसी भी संस्कारी किसी पुस्तक को पढ़ने की, आपको इतना कुछ यहां पर मिल जाएगा। मैं पढ़ने में थोड़ा सा लेजी हूं, बचपन से लेजी हूं, पढ़ना कम इंटरेस्ट रखती हूं, सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हूं। मेरी मैम कई बार मुझे चौक से मार भी देती थी कि पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं होता तेरा, लेकिन जब आंसर पूछती थी तो मैं सारा आंसर जब देती थी तो कहती थी देख तो रही नहीं थी तू किताब की तरफ, तो मैं कहती थी मैम कान आपकी तरफ थे, तो बड़ा हंसती थी। तो अपना अपना तरीका होता है किसी बात को सुनने का समझने का। एक कार्यक्रम में कुछ दिन पहले नोएडा रेडिसन होटल में जाने का अवसर मिला, वहां पर शिवानी दीदी आई थी और मुझे ऐसा पता लगा कि शायद वो उनके कैंसर कम्युनिटी की कुछ मेंबर हैं या कुछ ऐसा है, इंचार्ज है उनकी। और अनफॉर्चुनेटली मैं एक कैंसर पेशेंट हूं, लेकिन कभी भी बाबा ने ऐसा महसूस नहीं होने दिया। जिस दिन मैं चेयरपर्सन बनी उसके, उन दिनों में मेरी उत्तराखंड चुनाव में ड्यूटी थी, तो वहां पर मुझे जब फोन आया कि आपको ये दायित्व सरकार ने दिया है और आपको तुरंत शपथ लेने के लिए आना है, मैं दो ही दिन में वापस आई और मैंने एक महीना लगातार महिलाओं, क्योंकि मुझे एक पैशन है अपने काम का, मैं लड़कियों को हमेशा, जितनी भी यहां बहनें मेरी बैठी हैं छोटी बड़ी जो काम करती हैं, जॉब में है या किसी भी काम में लगी हुई हैं, मैं उनको एक ही सलाह दूंगी, लव योर वर्क, ऑलवेज लव योर वर्क, इवन इफ यू आर अ होम मेकर, इफ यू आर अ यू नो बिजनेस टाइकून, इफ यू आर वर्किंग एज व्हाटएवर पोस्ट यू आर वर्किंग एज, जस्ट लव योर वर्क। When you love your work, you get habits of loving everybody, everyone, everywhere, everything. एक habit develop हो जाती है। और जब आप अपने काम को प्यार करते हैं तो आपको उलझनों का सामना नहीं करना पड़ता। कल एक विषय चला कि समाज में आए थे, सोचा समाज का काम करेंगे, लेकिन खूब राजनीति होती है। मुझे एक दीदी ने आज कहा आप लोग तो राजनीति के लोग हो। मैंने कहा मुझे सुनना ही पसंद नहीं आता कि मैं राजनीति में हूं, क्योंकि मैं अपने काम को प्यार से करती हूं। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कौन कहां टांग खींच रहा है, मुझे ध्यान ही नहीं जाता। मुझे बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि अपने काम को फोकस करो। और मेरे घर के गुरु मेरे हस्बैंड और मेरी सास हैं। मेरे हस्बैंड कहते थे जैसे घोड़े को वो लगा देते हैं ना, दो क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेक्शंस लगा दिए जाते हैं, तो घोड़ा इधर उधर नहीं देखता, वो सीधा भागता रहता है अपने गंतव्य की ओर। तो इसलिए घोड़े की उस चीज को फॉलो करो, सीधा अपने टारगेट पर देखते रहो। और अपने टारगेट को आप देखोगे तो मुझे लगता है कौन राजनीति कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, क्या फर्क पड़ता है। जहां उन्होंने जाना है वहीं हमने जाना है, वही अंत हमारा है। और व्हाट एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जब हमें ये सारे मुहावरे पता हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ऐसा करिए ना कि भरनी अच्छी हो। अब शब्दों का इस्तेमाल करना इस मंच पर बिल्कुल अच्छा नहीं, परंतु हमारी पोस्टें ऐसी हैं कि हमें बड़ा खुल खुल कर बोलना पड़ता है लड़कियों को समझाने के लिए, दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन के लिए। एक छोटा सा इंस्टेंस आपको बताऊंगी जिसमें परिवार की बात जुड़ती है कि आप परिवार में जिस तरह का आप सीख देंगे, जो आप करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। संगीता जी जानती हैं, हम लोग कई बार छापे लगाते हैं, आनंद भी अभी जानते होंगे, सडन छापे लगाने हमें पड़ते हैं। तो एक बार हमारे पास मैसेज आया कि फला फला होटल में ना रोज स्कूल के बच्चे आते हैं और यूनिफॉर्म में आते हैं। तो जो मेरे राज्य की बाल आयोग की जो चेयरपर्सन है उनके साथ मैंने एक छापा लगाया और हमने उस होटल में 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा का लड़का, 8वीं की बेटी, 11वीं की लड़की, 12वीं का बेटा, ऐसे बच्चों को हम बाहर लेकर आए यूनिफॉर्म में। अब यूनिफॉर्म से ये भी पता चल जाता है स्कूल कौन सा है। हम बाहर लाए, हमने बच्चों को सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस लेके गए, उनको गाड़ी में बिठाया, थाने लाए, उनको समझाया कि ये सब अच्छी बात नहीं है, गलत रहा है। अचानक मैंने अपनी साथी को कहा, यार बाकी रूम्स नॉक करते हैं, देखें और क्या है। एक रूम नॉक किया तो उसमें एक 21 साल की लड़की, 24-25 साल का लड़का। मैंने उस लड़की को बाहर साइड में लिया और मैंने कहा, बेटा इज दिस गुड व्हाट यू आर डूइंग? तो उसने कहा, लुक मैम, आई एम 21 years old, ओके, यू कैन नॉट से एनीथिंग लाइक दिस टू मी। सो आई वाज शॉक्ड कि 21 की हो गई हमारी बेटी। 21 की उम्र में क्या हमारे संस्कार, हमारे माता पिता ने हमें संस्कार दिए कि अब तू बड़ी हो गई, अब पॉक्सो एक्ट से भी निकल गई और इतनी मैच्योर हो गई कि अब तू किसी भी के साथ इंडिपेंडेंट जा सकती है। आनंद भैया से रिक्वेस्ट करूंगी कुछ ना कुछ ऐसा करें, ये जो लिव इन का स्यापा छोड़ा हुआ है ये बहुत खराब है, बहुत ही गलत है, इससे बहुत बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे परिवारों में जो है विघ्न आ रहे हैं, टूट रहे हैं परिवार। तो उस बच्ची को मैंने ये बात जब बोली तो मैंने फिर साइड में पूछा कि पापा मम्मी क्या करते हैं? तो कहते हैं कि इंडस्ट्री में हैं और ऐसा ऐसा। तो जब उस बच्ची की हमने बात सुनी तो लेट नाइट्स आना, लेट पार्टीज, ड्रिंक्स, अगर आपका ऐसा माहौल है तो आप अपनी बच्ची से या बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसीलिए अभी दीदी भी ये बात कह रही थी कि घर के माहौल से, आपके संस्कारों से बात शुरू होती है। तो जब हम अपने बच्चों को संस्कार ऐसे देंगे या उनके सामने एग्जाम्पल एक ऐसा सेट करेंगे, मैं एक माँ हूं, अगर आप, मैं खुद रात के 2 बजे 2:30 बजे पार्टी से आ रही हूं और मैंने बियर पी है, शराब पी है और मैं आ रही हूं, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत मॉडर्न हाई फाई सोसाइटी की हूं, तो मैं अपनी बच्ची को वो शिक्षा नहीं दे सकती कि बेटा घर से बाहर 9 बजे के बाद नहीं जाना। आपको तुरंत क्या मिलेगा जवाब? ये थोड़ी मिलेगा, हां जी मम्मा कब कल से नहीं जाऊंगी, आपको ये जवाब मिलेगा, खुद तो तुम 2 बजे आती हो वहां। तो इसीलिए If you have to set an example for something, for a family binding, for family togetherness, whatever, you have to be an example yourself. You have to make those restrictions, those bindings, those lines, those thin lines for your life also, which you expect your children to do that. तो परिवार को बांधना बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक और instance अपने परिवार का बताऊंगी। एक बार मेरे देवरों में और पति में थोड़ी सी खटपट शुरू हो गई। किस लिए हो गई? कि परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा होना था, तो ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, और मुझे बिल्कुल प्रॉपर्टी से लगाव नहीं। इसलिए लगाव नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं जिस परिवार से, मायके से आती हूं, वो जम्मू कश्मीर का सबसे धनाढ्य पंजाबी परिवार है। और जब मेरे माता पिता का निधन हुआ, एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई, तो करोड़ों रुपए की जमीन और बिजनेस वो छोड़कर चले गए। मैं उस पिता की बेटी हूं जिसने जम्मू कश्मीर में हिंदी शुरू करवाई थी, नहीं तो वहां उर्दू चलती थी। मैं उस पिता की बेटी हूं जिससे शेख अब्दुल्ला डरता था। मैं मंचों से ये बात करती हूं अब कि शेख अब्दुल्ला को मेरे पिता कहते थे, जनसंघ के बारे में कुछ नहीं बोलना, बाकी अपनी यारी पक्की। उमर और मेरा भाई एक ही क्लास में पढ़े हैं, महबूबा मुफ्ती और मैं एक ही स्कूल के पढ़े हैं, तो मैं उस माहौल से निकली हूं, इसलिए मुझे राजनीति का ज्यादा ना शौक है ना फर्क पड़ता है, क्योंकि बचपन में ही मिनिस्टर ये वो चीफ मिनिस्टर ये सारा कुछ देखा है, तो कोई बहुत ज्यादा क्रेज नहीं आता। तो आज भी वो जो हमारी जमीन है उसमें मुसलमानों का कब्जा है, हमारे बढ़िया चेरी के पेड़, लुकाट के पेड़, बाबू गोशे के पेड़, जिनको हमारी मम्मी खाना खिलाने के बाद मुंह पहुंच कर कहती थी जाओ बेटा बाबू गोशा तोड़कर खा लो, हम लोगों का वो बचपन रहा, आज खरीदना पड़ता है और वो भी क्वालिटी ऐसी मिलती है। तो कहने का अभिप्राय ये कि आप जो पारिवारिक उस चीजों से निकल कर आते हैं तो आपको किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता। माता पिता के बाद जब विवाह हुआ तो सास ने मुझे माँ का वो प्यार दिया, मैं हर मंच पर हर कॉलेज में हर स्कूल में एक ही बात कहती हूं कि हे परमात्मा हे बाबा इन सब बेटियों को मेरी सास जैसी सास देना। उसका क्या कारण, जब मेरे पति और देवरों में थोड़ी सी अनबन हुई तो मेरे पति ने कहा बच्चों को मम्मी को नहीं मिलाना, खबरदार तूने अपनी मम्मी के पास बच्चों को भेज दिया। लेकिन मैंने कहा मेरी सास का क्या कसूर, तुम लोग लड़ाई कर रहे हो भाई भाई, मम्मी ने क्या कसूर किया। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को शाम को आके चुपके से कहा, मैंने कहा सुबह का टिफिन आप बनाओगी बच्चों का। वो ये नहीं था कि मैं अपने बच्चों का टिफिन नहीं बना सकती थी, कारण ये था कि मेरी गली अगली गली में सास रहती हैं और इस गली में मैं, तो जब मेरे बच्चे ऑटो पे मेरे घर से निकलेंगे और सास के घर के आगे जाएंगे वो टिफिन लेकर खड़ी होंगी और अपने पोता पोतियों को देखकर दुलार कर देंगी, केवल इसलिए कि एक बाइंडिंग परिवार की बनी रहे, फैमिली बाइंडिंग। और ये बात मेरी सास ने रियलाइज की कि ये वाली मेरी बहू ऐसी है जो बेटे के मना करने के बावजूद, बेटे के इस स्वभाव के बावजूद पोते पोतियों को मुझसे अलग नहीं कर रही, नहीं तो मेरे घर में भी वो आश्रम बनाने वाली स्थिति आ जाती कि तुम तो निकलो बाहर और यहां पर हम बनाएंगे आश्रम। इसीलिए फैमिली एम्पावरमेंट आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा करते हैं। इफ यू टेल योर डॉटर्स, मेरी उम्र की जितनी भी यहां बहनें बैठी हैं, चाहे वो सास, मैं तो सास बन चुकी हूं, चाहे वो सास बन चुकी हैं चाहे बनने वाली हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने अपना एज अ बहू जीवन कैसे निकाला। इवन इफ यू हैड बैड एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ यू शुड वॉश दोज। इसीलिए ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, इसीलिए ये बहने हैं, इसीलिए ब्रजभान भैया हैं कि हमें वो गाइड करें कि जो बैड इवेंट्स, जो बैड एक्सपीरियंसेस हमने सुने देखे और बिताए हैं उनको हम वॉश करके वन ऑफ द बेस्ट लाइफ अपने बच्चों को कैसे दें, ताकि बड़े होकर वो हमें आश्रमों के रास्ते ना दिखाएं, हमें अपने परिवार में बैठने की बात करें, होना ऐसा चाहिए। और एक्सपेक्ट करती हूं बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता बैठे हैं, मैं तो इतने में ही खुश हूं कि मुझे ऐसे स्वर्ग जैसी जगह में आने का मौका मिला, बोलना तो मेरे लिए बहुत बहुत करोड़ों गुना बड़ी बात थी। और मैं आप सबसे वंदन के साथ विदा लेती हूं और एक ही बात कहूंगी, परिवार को जोड़ के रखिए, तोड़ना बड़ा आसान है। 2246 केस 2022-23 में हमारे पास आए हैं विमेन कमीशन में हरियाणा में, 2246, जिनमें 80% परिवार टूटने के केसेस थे, कुछ लिव इन की वजह से, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से और कुछ सास बहू की लड़ाइयों से। एक तो स्टॉप वॉचिंग दिस टीवी, मैं खुद एक एक्ट्रेस रही हूं बट आई नेवर वर्कड इन द सीरियल्स जिसमें ये वाला चक्कर होता था, अच्छा तुझे अब बताऊंगी, शादी हुई अभी दुल्हन के कपड़े हैं और घुसते ही बोलेगी अब देखती हूं। एवरी सीरियल हैज गॉट दैट नॉनसेंस स्टोरी, माफ करना मेरे शब्दों को, एवरी सीरियल हैज दैट स्टोरी, एवरी सीरियल हैज टू बॉयफ्रेंड्स, टू गर्लफ्रेंड्स, टू हस्बैंड्स, टू वाइफ्स, एवरी सीरियल। रामायण देखिए, महाभारत देखिए, उसमें से निकाल के लाइए, बहुत अच्छा जूस है उसमें, हेल्दी जूस है, उसमें से अपना जीवन यापन करिए। हमने करना शुरू कर दिया, इनके सानिध्य में आप लोग भी करिए, यहां पर आए हैं, मौका है आपको कुछ सीख कर जाने का, और प्रण लेकर जाएं कि आई विल लीव ऑल दीज बैड थिंग्स इन दिस सरोवर एंड गो एंड वॉश एवरीथिंग एंड डू बेस्ट फॉर माई फैमिली एंड समाज. बहुत बहुत शुक्रिया. जय भारत, जय हिंद, ओम शांति.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेणु भाटिया जी. अपने बहुत जीवन के सुंदर अनुभवों से आपने सभी को प्रेरणाएं दी हैं. आपने हमें सिखाया कि अपने काम को प्यार करो और सदा ही अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर अपनी नज़र रखो. और परिवार में ज़रूर हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, नहीं तो पता चलेगा कि हमारा घर ही फिर आश्रम बनाने की नौबत, वृद्धाश्रम बनाने की नौबत आ जाएगी. अभी मैं अगले वक्ता को आमंत्रित कर रही हूँ, हमारी परम आदरणीय चक्रधारी चंद्रिका दीदी जी, जो अहमदाबाद से पधारी हैं और आप यूथ विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं. आप गुजरात अहमदाबाद महादेव नगर सब जोन की संचालिका हैं, जिसमें लगभग 30 ब्रांचेस हैं जिनका आप कुशलता पूर्वक निर्देशन करते हैं. यूथ विंग के कई राष्ट्रीय स्तर के आपने अभियान किए हैं, फेस्टिवल्स उनका सफलतापूर्वक आयोजन किया है. आप आर्ट एंड कल्चर विंग की भी चेयरपर्सन हैं और अपनी जो हेडक्वार्टर्स की मैनेजमेंट कमेटी है उसके भी आप मेंबर हैं. इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में समय प्रति समय नवीनता लाने में भी आपका बड़ा योगदान है. और आपके लिए मैं कहूंगी, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्षों की भांति फलता है कोई कोई, फूल बहुत खिलते हैं गुलशन में, खुशबू देता है कोई कोई. तो आप परमात्मा की इस बगिया के वो रूहानी खुशबूदार फूल हैं जिनके गुणों की खुशबू अनेक को सुगंध पहुंचाती है. तो आपसे हम सुनेंगे, प्रेरणा लेंगे.
ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. सामान्य मंच और सभा में उपस्थित सभी भाई बहने, आज का दिन आप हम सभी के लिए बहुत उम्मीदों का दिन है, बहुत ही आशाओं के किरण में देख रही हूं. जबकि महिला प्रभाग के द्वारा सशक्त परिवार की बाबत मनन चिंतन करने लिए एकत्रित किया गया है, विषय ही अपने आप में हमें सूचित करता है कि आज की परिस्थितियां ऐसी हैं, परिवार टूटने लगे हैं, परिवार के साथ दिलों के टुकड़े भी होने लगे हैं, दिलों के टुकड़ों के साथ समाज और देश का भी टुकड़े टुकड़ा हो गया है. और न केवल इतना, परंतु आज विश्व की हालातें भी अति दयनीय भी हैं, दुखदायक भी हैं, जो किसी के लिए टॉलरेबल नहीं है, असहनीय है. और इन असहनीय परिवारों परिस्थितियों में हम देखते हैं हर आए दिन न्यूज़पेपर में कितने लोग आत्मघात करते हैं, कितने लोग हिंसा करते हैं, कितने लोग हत्या करते हैं, कितने लोग कुकृत्य करते हैं। ये सब हुआ कहां से? जब परिवार टूटने लगे, संयुक्त परिवार से विभक्त परिवार होने लगे, परिवार में 10 हो 8 हो 2 हो मिलकर के चल नहीं सकते हैं, न प्यार की फीलिंग है न खुशी की फीलिंग है। और इसीलिए होटल्स में, मोटल्स में, थिएटर्स में, जहां से थोड़ा सुख चैन मिल जाए वहां मानव ने, लोगों ने घूमना शुरू कर दिया है। अच्छे विचार वाले लोगों ने कहां धर्म स्थान, कहां मंदिर, कहां गुरुद्वारा, कहां कोई कथा सत्संग, कि कहां से तो आशा का किरण मिल जाए। लेकिन आप हम सभी जानते हैं, हम किसी को भी दोषित नहीं कह सकते हैं। इन परिस्थितियों का कारण समय का प्रभाव है, ये कलयुग है। लोगों के मन मस्तिष्क में व्यसनों की, विकारों की, विकृति की कालिमा छाई हुई है और हरेक दूसरे को दोष देने पर तैयार है, हरेक दूसरों को ही दोषी ठहराता है। और परिणाम ये आता है कि दोष से दोष का कैलकुलेशन बढ़ता जाता है, एक दूसरों को केवल दोषी ठहराते हैं, चाहे वो घर है, धर्म है, समाज है, राज्य है, राष्ट्र है। अब तो समस्या लगती है और इन प्रश्नों से बाहर किस प्रकार आया जाएगा, कौन हमें बाहर लाएगा? तब मैंने आज कहा कि आज मैं बहुत उम्मीदों को देख रही हूं, आशा के किरण को देख रही हूं। आज हमें वो वचन याद दिलाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज वो समय है जब स्वयं परमात्मा को आने की आवश्यकता है और परमात्मा के सिवाय इन परिस्थितियों को पलटने में और कोई सफल नहीं हो सकता है। मुझे आपको कहना चाहिए, सन 1937 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, निराकार परमात्मा ने ब्रह्मा पिता के माध्यम के द्वारा स्थापन किया और आज 87 वर्ष हो गए हैं इस विद्यालय को कार्य करते हुए। और हमारे जैसी 40,000 बहनों ने अपना जीवन स्वाहा किया हुआ है। स्त्री शक्ति क्या कर सकती है? नारी तो नारायणी, ये सत्य है, ये हकीकत है। तो महिलाओं के द्वारा ये कार्य सहज संभव कैसे किया है परमात्मा ने, उसकी मास्टर की मैं आपको देना चाहती हूं। परमात्मा ने आकर के पहला काम ये किया, माताओं बहनों का एक छोटा सा संगठन बनाया। करीब 350 जितनी माताओं बहनों के संगठन को 14 साल तक तपस्या, स्पिरिचुअल एजुकेशन, संस्कारों का घड़तर दिया और उन माताओं बहनों के द्वारा ये कार्य को प्रारंभ किया। अब परमात्मा ने जो चार बेसिक बातें इसके एजुकेशन में अडॉप्ट की वो हम सबको अवश्य करनी पड़ेगी, और मैं गारंटी करती हूं कि यहां से कोई भी महिला, कोई भी बहन, कोई भी भाई इन चार बातों को अपने जीवन में अडॉप्ट कर सकेंगे तो उसकी सक्सेस श्योर है, गारंटी है। सबसे पहले अप्रिशिएशन। परमात्मा ने यह सिखाया कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो और आप आत्मा परमात्मा की संतान हो, और क्योंकि आप परमात्मा की संतान हो आप परमात्मा के जैसे हो। एक पिता की योग्यता पुत्रता में, पुत्र में आए, कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा मां वैसी बेटी। परमात्मा ने उन बहनों को, माताओं को ये विश्वास दिलाया कि आप परमात्मा के बच्चे, परमात्मा समान हैं और आप अपने आप को हमेशा एप्रिशिएट कीजिए, अपने स्वमान में रहिए और इतना स्वमान में रहिए कि आपको दुनिया की किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रहे ही नहीं। ताली बजाओ प्रेम से। जब एक आत्मा अपने आप में संपन्न है, संपूर्ण है, पूर्ण है, उन्हें ये महसूस हो जाता है, उनको ये अनुभव हो जाता है, वो उस स्वरूप को महसूस करने लगते हैं। स्वाभाविक रीति एक दीपक के जलने से अंधकार खत्म हो जाता है, स्वाभाविक रीति अपने आप को अप्रिशिएट करने से सब प्रकार की अपेक्षाएं अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या आप अपने आप को अप्रिशिएट कर सकते हैं? जो कहते हैं यस तो हाथ उठाएं। आज से, इसी घड़ी से मुझे अपने आप को अच्छी तरह से अपने पूर्ण स्वरूप में अप्रिशिएट करना है। और वो अप्रिशिएशन को फैलाना है। एक बार दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे पूछा गया कि बहन जी आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, आप बताइए कि यूथ की प्रेजेंट डिमांड क्या है इन अ सिंगल वर्ड। मैंने कहा अप्रिशिएशन, और वो लोग बहुत खुश हो गए, यस राइट। अरे खुशामद तो खुदा को भी प्यारी लगती है। इंसान को क्यों नहीं लगेगी? तो मेरी बहनें, माताएं, ये एप्रिशिएशन का जादू सबसे बड़ा जादू है। आप अपनी बच्ची को, बेटे को, पति को, फ्रेंड को, सास को, ससुर को, मां को, पिता को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। कर सकते हैं? जो कहते कर सकते हाथ उठाइए। दिल से अप्रिशिएट करेंगे, उनकी कोई कमी नहीं देखनी है, कोई कमजोरी नहीं देखनी है। आप कहेंगे ये कैसे होगा? अरे ये जो कमी और कमजोरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड साइकिल। ये तो ये शरीर के साथ कुछ है, पर वो तो एक आत्मा है और आप उसके दिव्य स्वरूप को देखिए। टाइम लिखा नहीं गया है कि कितनी मिनट बोलना है, लेकिन मैं बहुत जल्दी पूरा करूंगी क्योंकि मंच पर बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं, वडील लोग बैठे हैं। दूसरा क्या करना है? एप्रिशिएशन के बाद एक्सेप्टेंस। आप फुल्ली एक्सेप्ट करना सीखो, मैं जो हूं जैसी हूं मैं अपने को भी एक्सेप्ट कर लो और अंडरस्टैंड करो। मैं कभी अपने को भी ब्लेम नहीं करूं, मैं अपने आप को भी हर्ट नहीं करूं, मैं अपने को अंडरस्टैंड करूं कि मैं क्या हूं और मुझे कहां जाना है। ठीक उसी प्रकार मैं सभी को एक्सेप्ट कर लूं, जो हैं जैसे हैं उनको एक्सेप्ट करने की अगर कला आ गई, वैसे हमारे में है कला। एक लूला है, उसको देख के कहते ये बेचारा लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, उनसे हम वो अपेक्षा नहीं करते हैं कि वो चले, वो देखे, वो सुने, ये हम समझ जाते हैं। क्या हम अपने अंदर ये कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं कि हम हरेक की मानसिक स्थिति को समझ पाए हैं? आज मन को तकलीफ हो गई है, मन की लिमिटेशंस लगी हुई हैं। अगर आप सुखी बनना चाहते हो तो आपके साथी की, सामने वाले की, पार्टनर की लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करके उसको सहयोग करो, मदद करो। जैसे लंगड़े का हाथ पकड़ के रास्ता तय कराते हैं, अंधे को रास्ता तय कराते हैं, कोई भी लिमिटेशंस वाले इंसान को पहचान करके, हमदर्दी दिखा करके, उसको जहां है वहां से उठाने की, आगे बढ़ाने की शक्ति अपने में धारण करे, तो एक्सेप्टेंस के बाद उनको सहयोग करने का, कोऑपरेशन करने का एक गुण अपने अंदर धारण कर ले, आप अपने जीवन में जादू महसूस करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। तीसरी बात है पॉजिटिविटी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और हरेक के लिए एक अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड हो। गहरा विषय है, इस वर्ष इस विद्यालय का यही सब्जेक्ट है, द ईयर ऑफ पॉजिटिविटी। और चौथी बात है घर परिवार के अंदर आपस में मिलकर के बैठना है। पूरे दिन में 10 मिनट ही सही, 15 मिनट ही सही, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग, उसके लिए अपनी डेली रूटीन के अंदर जितना भी बड़ा परिवार है उनके साथ एक प्यार भरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, हर आए दिन नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, वीक में 2-4 बार तो मिल लो और बातों को शेयर करो, एक दो को केयर करो और उसको इंस्पायर करो। किसी को निराश नहीं होने दो, हताश नहीं होने दो, पीछे हट नहीं करने दो, कहो हम हैं, आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। ऐसे कुछ मूल्यों को जीवन में धारण करने से इस काम को हम बहुत अच्छी तरह से और सहज तरीके से कर सकेंगे। मेरी आप सबको बहुत मंगल कामना है कि आप यहां आए हैं, अपना स्पेशल भाग्य लेकर के आए हैं, भगवान ने आपको विशेष सिलेक्ट करके बुलाया है और इसलिए आप अपने भाग्य के साथ यहां से विशेष संकल्प करके जाएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस का परिणाम कम से कम मेरे जीवन में तो आत्मसात होना ही चाहिए। मंजूर है? तो एक मिनट खड़े हो जाए। अपने दिल पर हाथ रखिए, आप रिपीट करोगे, ओम शांति। आज इस महिला सम्मेलन के मध्य मैं आत्मा संकल्प करती हूं, मैं अपने आप को अच्छी तरह से समझकर अप्रिशिएट करूंगी। मैं एक विशेष आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, यूनिक आत्मा हूं, मेरी जैसा दूसरा कोई व्यक्ति पहले था नहीं, आज है नहीं, भविष्य में होगा नहीं। इसलिए भगवान की डायरी में मेरे लिए जो लिखा है वो मैं अवश्य करूंगी। दूसरा, मुझे स्वीकार्य है, मैं भी अच्छी हूं, मेरे आसपास वाले लोग अच्छे हैं, ये पूरा विश्व भी अच्छा है और विश्व नियंता परमात्मा विश्व को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आया हुआ है। मुझे ये भी विश्वास है संपूर्ण सकारात्मकता से संपूर्णता का अनुभव मैं भी करूंगी, हर मानव करेगा। इसलिए सकारात्मकता को 1-to-1 लोगों तक पहुंचाने का कार्य अवश्य ही करूंगी। मेरे परिवार को सुखद बनाने, शक्तिशाली बनाने, शेयरिंग, केयरिंग एंड इंस्पायरिंग, इस एक्सरसाइज को मैं अपने जीवन में अप्लाई करूंगी। धन्यवाद। ओम शांति।
आदरणीय चंद्रिका दीदी ने हमें बहुत सारे मंत्र दिए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट एप्रिसिएशन का मंत्र है कि जिससे हम सभी के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं और साथ साथ हमें हमारे साथी, हमारे परिवार वाले जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमें उन्हें एक्सेप्ट करना है क्योंकि हमें उनके साथ ही रहना है, उनकी कमियों को स्वीकार करना है और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव बनाए रखना है। तो सकारात्मकता की जब बात चल रही है और विद्यालय का इस वर्ष की थीम भी सकारात्मक पॉजिटिव चेंज पर है, तो मुझे एक उदाहरण याद आता है कि एक फैमिली जर्नलिस्ट थे, फैमिली के जो हस्बैंड थे और उनका रिटायरमेंट हुआ था और वो अपना पिछला साल लिख रहे थे, लिखने की आदत थी उनको। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि मेरा पिछला साल कुछ अच्छा नहीं गुजरा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसका एक साल बर्बाद हो गया क्योंकि एग्जाम के थोड़े दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में फ्रैक्चर हुआ, तो वो पैर में फ्रैक्चर के कारण प्लास्टर लगा रहा और वो फुल बेड रेस्ट पर था। उसने कहा मेरा ऑपरेशन हुआ और मुझे भी कई दिनों तक बेड पर रहना पड़ा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मैं रिटायर हो गया। तो पत्नी ने ये देखा, पढ़ा, तो उसने उसी पेज को पलटा और उसे पॉजिटिव तरीके से फिर लिखा कि पिछले साल जो हमारा समय रहा मैं उसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, भले उसका एक साल बर्बाद हुआ लेकिन उसको जीवन दान मिला, ऐसा एक्सीडेंट था कि उसकी मृत्यु भी हो सकती थी लेकिन उसे नया जीवन मिला, तो एक साल उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं है। फिर फिर उसने कहा मेरे पति का ऑपरेशन हुआ, लंबे समय से वो दर्द में थे, बीमार थे, ऑपरेशन के बाद आज वो स्वस्थ हैं, दर्द से मुक्त हैं। इसके लिए मैं भगवान का धन्यवाद देती हूँ। मेरे ससुर की मृत्यु हुई 80 साल की उम्र में, बिना किसी लंबी बीमारी के सहज उनकी मृत्यु हुई। तो जीवन में जो आता है उसे जाना तो है ही, लेकिन वो इतने सहज गए उसके लिए भी मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। और फिर उसने कहा मेरे पति अब रिटायर हो गए हैं, बहुत समय से उनकी इच्छा थी कि वो पुस्तक लिखें, अब उन्हें समय मिलेगा कि वो अपनी इस इच्छा को, अपनी इस रुचि को वो पूरा कर पाएंगे। तो जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर हम उनके प्रति सकारात्मक हैं तो निश्चित रूप से वो समस्या हमें समस्या नहीं लगती है, क्योंकि हर घटना के दो पहलू होते हैं। अगर उसमें कहीं हमारा बुरा हो रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं फिर हमारा भला भी है, पर हमारी देखने की नजर या हमारा नजरिया वो होना चाहिए। और अभी इस उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय भ्राता प्रोफेसर आनंद पालीवाल जी को मैं निवेदन करने जा रही हूँ अपना मुख्य अतिथि का उद्बोधन देने के लिए। आप मेंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से विशेष रूप से आप पधारे हैं और वर्तमान में आप उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के डीन एंड चेयरमैन भी हैं, खासकर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के। आप भामाशाह और देवांग मेहता जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स के रेसिपिएंट हैं और आपने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन लॉ के लिए 15 कैंडिडेट्स को गाइड किया है। आपने 4 पुस्तक पब्लिश की हैं और आपके 30 रिसर्च पेपर भी रेप्यूटेड जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। आपने बहुत नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में भाग लिया है, एज ए की नोट स्पीकर आपने रिप्रेजेंट किया है और ICSSR के मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स की भी आपकी जिम्मेवारी है। तो आपसे अनुरोध है कृपया आप अपना मुख्य वक्तव्य हमारे सम्मुख रखें।
मंच पर उपस्थित इस कॉन्फ्रेंस में आज जो अध्यक्षता कर रहे हैं ऐसे श्रद्धेय ब्रिजमोहन जी भाई साहब, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय चंद्रिका दीदी, श्रद्धेय चक्रधारी जी दीदी, सम्माननीय रीनू भाटिया जी चेयरपर्सन स्टेट वुमेन कमीशन, सम्माननीय संगीता बेनीवाल जी चेयरपर्सन स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट राजस्थान सरकार, साथ में यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। वैसे तो ये कॉन्फ्रेंस इम्पावरिंग द फैमिली के ऊपर है, फैमिली इम्पावरमेंट के ऊपर है, तो लॉ फील्ड से आते हैं, इसमें कुछ विषय ऐसे हैं कि जो मेरे ख्याल से कि एक थोड़े हटके हैं। मैं प्रयास करूंगा कि कुछ मैं यहाँ भी इतना सब सुना है तो कुछ सार्थकता के साथ आपके सामने कुछ प्रस्तुत कर सकूं। आज हम जब देखते हैं परिवार का कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ फैमिली की जब हम बात करते हैं, आज एक मॉडर्नाइजेशन हो गया, एक एडवांसमेंट हो रहा है, ऐसा लगता है कि परिवार ये क्या शब्द है, ऐसा लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज फैमिली, हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो हार्वर्ड जो आपको पता होगा यूनिवर्सिटी, वहां पे जब जो जनरल है वहां पे जब उन्होंने स्टडी करी तो उन्होंने बोला यदि मनुष्य को अधिक समय तक स्वस्थ रहना है, यदि मनुष्य की आयु अच्छी है, मतलब अच्छी आगे तक लंबी रहनी चाहिए, लॉन्गिविटी रहती है, वो सभी प्रकार से चिंताओं से विकारों से दूर रहते हुए एक स्वस्थ जीवन जी सकता है, तो तभी संभव है जब उसके साथ परिवार है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टडी थी उसमें उन्होंने अपने उसमें बताया। परिवार का मतलब हम ये समझते हैं कि एक ब्लड रिलेशन से जो हमारे साथ आए वो हमारे परिवार के हिस्से हैं, जो हमें हेरिटेज में मिला है वो हमारे परिवार के हिस्से हैं, हम यहाँ बैठे हैं आपस में एक लव है, कंपेशन है, जिसके वजह से भी हम एक परिवार का हिस्सा बनते हैं। एक बहुत बड़ी अभी महामारी आई थी, 2 साल पुरानी बात है, हम सबको पता होगा कोरोना जो एपिडेमिक था इतना बड़ा, आपको सबको इस बारे में पता होगा, जहां जहां पे भी यहां पे ज्वाइंट फैमिली का जहां पे कंसेप्ट है, जहां जहां पे परिवार था, जहां पे संबल एक दूसरे को दिया गया था, जहां सपोर्ट थी, जहां फैमिली की एक स्ट्रेंथ थी, वहां पे जो डेथ रेशो था वो बहुत कम हुआ था। तो हमें इन्हीं सब चीजों से पता लगता है कि परिवार का एक स्ट्रेंथनिंग, एक एम्पावरमेंट, एक ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके वेलबींग के लिए कितनी आवश्यक है। तो हम अगर ये सोच के अगर हम परिवार के महत्व को समझेंगे तब हमें पता लगेगा वास्तव में परिवार जो है ये एक कंसेप्ट नहीं है, परिवार एक भाव है जो हमारे अंदर आत्मा से आता है, जो हमारे संस्कारों में आता है, जो हमें सिखाता है कि इस भाव को हमें निरंतरता के साथ आने वाली पीढ़ियों को देते हुए जाना है। उनके अंदर भी हम ये भाव उत्पन्न करें कि इस परिवार भाव को सतत रूप से जैसा हमें अपने पूर्वजों से मिला है उसे हमें आने वाली जनरेशंस को देते हुए जाएं। एक विश्वास होता है, एक प्रेम होता है, एक सहयोग होता है, और परिवार ही वो होता है जो आपके अंदर आपके वैल्यूज को, आपके कल्चर को, आपके ट्रेडिशंस को, सबको आपके अंदर लाता है। अभी हमारे सामने एग्जाम्पल भी दिए गए थे दीदी के द्वारा कि किस तरह से एक बच्चे की जो मोल्ड होता है कंसेप्ट, वो मोल्ड मतलब उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, उसके अंदर जो उसके पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, उसमें परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। 2 बच्चों का एग्जाम्पल मैं आपको ऐसी छोटी सी बात बता रहा हूं कि 2 बच्चे को, एक बच्चे को भी सेब दिया गया, एक को सेब गया, दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तो एक बच्चे को जिसे सेब दिया उसने क्या किया कि खेलते खेलते चुपचाप सेब जेब में रखा, अंदर गया कमरे में, सेब खाया, एप्पल खाया, और अपने हाथ वाथ साफ के बाहर आके वापिस अपने दोस्तों के साथ खेलने लग गया। दूसरे बच्चे को भी जो सेब दिया था उसने उसी सेब को टुकड़ों में बांटा, छोटे छोटे जितने भी उसके दोस्त थे सबको एक एक टुकड़ा दिया और खुद ने भी एक टुकड़ा खाया। तो परिवार ही बच्चों की पर्सनैलिटी को सेव करता है। हम किस प्रकार से अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशंस को हम अपने संस्कार दे रहे हैं, वो परिवार में एक महती भूमिका आने वाले समय में निभाने वाले। कभी कभार हमें लगता है कि एक सिटीजनशिप के नाते भी हम देखते हैं कि हम भारत के नागरिक, हमें कभी इसका महसूस नहीं होता, पर जो लोग एक नागरिकता के लिए तरस रहे होते हैं, जिन्हें किसी देश की किसी राष्ट्र की नागरिकता नहीं मिलती है, कभी हम अगर उनसे समझे कि इस नागरिकता की क्या वैल्यू है तो समझा सकते हैं। वैसे कोई अनाथ ये बता सकता है कि परिवार का क्या महत्व किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। हम ईश्वर से एक वरदान के रूप में, मैं तो कहता हूं सभी को ईश्वर ये वरदान दे कि वो एक अच्छे परिवार के साथ, एक अच्छे प्यार के साथ आगे बढ़े, तो वो कभी भी उसके मूल्य को जो ईश्वर ने उसे परिवार के रूप में, जो शक्ति दी है, जो ईश्वर ने उसके परिवार के रूप में एक संस्कार दिए, ईश्वर ने उसे आगे जाने का रास्ता दिखाया, उसके महत्व को कभी भी समझ नहीं पाता है। हम अपने एजुकेशन से ध्यान देते हैं, एजुकेशन के पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर एक अहम का भाव आ जाता है, हम ये सोचते हैं कि हमें अच्छी भाषा आ गई है, अच्छा बोलना आ गया, हमारे अच्छे कल्चर है, हमारे अच्छे वैल्यूज है, हम खुद अपने अंदर एक अहम का जो निर्माण करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार को, हमारे बीच में अगर मैं कहूं तो अपने उन संस्कारों का भाव हमारे अंदर लाता है जो इन मूल्यों को कहीं ना कहीं गिराने का काम करता है। अफ्रीका के देशों ने स्टडी करके जब उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने एक पेपर लिखा था कि वी व्हेन केम देयर वी टॉट यू वी मेक यू लर्न वी मेक यू हाउ टू ड्रेस, तो उसके बाद जब आने वाली जनरेशन, मतलब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से मैं अगर कहूं तो शायद 7 साल या 5 साल पुराना है मुझे थोड़ा सा इसमें, उन्होंने वहां के जो बच्चे थे नाइजीरिया, उन्होंने रिसर्च करके पेपर के, उन्होंने बोला आप ये हमें मत बताइए कि आपने हमें आके यहाँ आके हमें आपने पढ़ना सिखाया, आप ये हमें मत बताइए कि आपने यहाँ आके हमें कपड़ा पहनना सिखाया, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, वो हमें अपने गानों के जरिए, अपनी संस्कृति के जरिए हमें खेती करना सिखाते थे, हमें अच्छा जीना सिखाते थे, हमें जैसे कपड़े वो पहनते थे वो पहनना सिखाते थे। तो आप ये मत कहिए कि आपने हमें सुख दिया है, बल आपने तो हमसे वो भाव था जो हमारे अंदर एक आत्मीयता थी, जो हमारे अंदर एक प्यार था, वो सब आपने छीन लिया है, भले ही आपने हमें कुछ और देके गए हो, पर जो हमारा मूल्य था, जो परिवार भाव था, वो आपने कहीं ना कहीं खत्म किया। इसलिए आप ये मत कहिए कि आपने हमें दिया है, हम तो आपसे आने से पहले भी बहुत समृद्ध थे। आज हम भी अपने घर में देखते हैं, आज हमने इतने कैरियर ओरिएंटेड होते जा रहे हैं कि पहले के समय में गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ दादा दादी नाना नानी के घरों के लिए होती थी और ऐसा होता था कि चलो जाएंगे गांव में मिलेंगे। एक बच्चा अपने से ज्यादा सबसे जुड़ने का भाव अपने अंदर लाता था। पर आज कहीं ना कहीं हम उस संस्कृति का एक हिस्सा अपने आप को बनाने की कोशिश करते हैं जहां पे मदर्स डे एक दिन बनाया जाता है, व्हाट्सएप स्टेटस हम लगा देते हैं, फादर्स डे हमारे अंदर बताया जाता है। अभी भाटिया जी जैसे बता रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप को हम लोग दौड़ रहे हैं, हम किस ओर अपने समाज को अपनी संस्कृति को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में तो हमें भी सोचना ही पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम एक परिवार के रूप में जब तक हमारी फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तभी तक हम अपने संस्कारों के साथ एक सही दिशा इस समाज को देने का भी काम कर सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में आज कोई किसी के साथ है, अब ये कहने लगे साहब इसके लिए तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट बना देना चाहिए, उसके बाद फिर कल को उनके साथ बच्चे हो गए, फिर कल को किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट, फिर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या ये परिवार भाव लाएगा? क्या ये एक दूसरे पर समर्पण, एक बच्चों में संस्कार का भाव लाएगा? तो ये सब चैलेंजेस है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका प्रतिकार भी समाज के जरिए होना चाहिए, इसका प्रतिकार भी आप सबके द्वारा अपनी अपनी तरीके से होना चाहिए। अपने संस्कार जब अपने बच्चों में देते हैं, अच्छे परिवार जो बच्चों के अंदर संस्कार देता है तो वो इन कुरीतियों को खुद ही अपने आप ही उससे कहते हैं ना मुंह मोड़ लेते हैं, अपने आप ही उन कुरीतियों को खत्म कर देते हैं। एक बच्चे के अंदर संस्कार दिया जाता है वो मोबाइल में कभी भी ओटीटी सीरीज में नहीं जाएगा। एक बच्चे में संस्कार दिया जाएगा कभी भी फादर्स डे मदर्स डे जैसा कंसेप्ट को मत लाओ। हमारे लिए तो हर दिन फादर्स डे है, हमारे यहाँ तो हर दिन मदर्स डे है, हमारे यहाँ तो हर दिन हम अपने दादा दादी पेरेंट्स, तो हम अपनी परिवार में जिस परिवार में हम रहते हैं वहां पे ऐसी पृथकता का भाव नहीं है, वहां पे सबको साथ लेके चलने का भाव है। उन सब चीजों को लेते हुए हम कैसे आगे चल सकते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तीन चीजें हैं, एक रॉक पत्थर, एक पेबल्स जो छोटे छोटे होते हैं और एक सैंड। ये तीन चीजें रखी गई और इसके साथ में दो फ्लास्क रखे गए थे और कहा कि आप ये तीनों चीजें, तीन फ्लास्क रखेंगे, तीनों चीजें रख दी कि रॉक्स रख दिए, पेबल्स रख दिए और सैंड रख दी कि आप ये तीनों भर दो। एक ने क्या किया, पहले सैंड उसके अंदर पूरी भर दी, फिर थोड़े बहुत पेबल्स के टुकड़े आए, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं आपको पता है, उसके बाद रॉक तो उसमें आ ही नहीं सकता था। दूसरे ने फिर प्रयास किया, उसके अंदर उसने पहले पेबल्स डाले, फिर उसमें सैंड डाली, बड़ी मुश्किल से अब रॉक्स तो उसमें आ ही नहीं पा रहे थे। तीसरे ने पहले प्रयास से किया, पहले उसमें रॉक जो थी वो डाली, फिर भी जगह थी तो फिर उसमें पेबल्स छोटे छोटे चले गए, फिर भी उसमें जगह थी तो फिर जब सैंड डाली जो रेत डाली तो वो भी उसमें चली गई। यानी कि रॉक का मतलब होता है फैमिली, पेबल्स का मतलब होता है हमारे कैरियर और सैंड का मतलब होता है जो हम इतनी सारी टेंशन वरीज एंग्जाइटीज लेके चलते हैं। अगर हमने अपने जिंदगी में सब टेंशन वरी एंग्जाइटीज इन सबको सबसे ज्यादा भर दिया तो ना हम अपने कैरियर को बना पाते हैं, ना अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं, ना उनके बारे में सोच पाते हैं। या दूसरा यह है कि यदि हमने पहले कैरियर यानी पेबल्स को ही पहले भर दिया, अपना कैरियर अपनी पहुंच अपनी आगे से आगे समृद्धि, तो हम टेंशन एंग्जाइटीज तो अपने साथ ले लेंगे पर अपने परिवार को अपने साथ कभी भी नहीं ला पाएंगे। तीसरा होता है हमारा परिवार जो रॉक है, यदि हमने पहले उसे अपने साथ लिया तो हम अपने कैरियर को भी बहुत अच्छी तरह से चीजें ले सकते हैं और ये टेंशन वरीज जो आने वाली ये भी छोटी छोटी आएंगी और ये भी हमारे जीवन में हम उनको भी समाहित कर सकते हैं। यानी ये हमारे अंदर है कि हम किस चीज को प्राथमिकता देते हैं। अगर आपने पहले अपने परिवार को प्राथमिकता दी, अपने फैमिली वैल्यूज को प्राथमिकता दी, अपने परिवार को साथ लेके चलने का अपने अपने अंदर भाव रखा तो बाकी सब चीजें सेकेंडरी है। वो सब चीजें कैसे कब आएंगी, कहां मतलब एडजस्ट हो जाएंगी ये हमें भी पता नहीं लगेगा। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने भविष्य में जब आगे बढ़ने का काम करते हैं तो हम किन चीजों को प्राथमिकताएं देते हैं। और प्राथमिकता में यदि परिवार आता है, यदि हमारे फैमिली इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हम स्ट्रेंथिंग द फैमिली की बात करते हैं तो वो हमें अपने आचरण के द्वारा अपने कंडक्ट के द्वारा करके बताने की जरूरत है। हम उस सनातन धर्म को मानने वाले हैं जहां पे हमारे समाज की दिशा कैसे होगी, जहां पे हमारी समाज की दिशा कैसे रहने वाली है। हमारे वेदों की बात करें, हम ऋग्वेद अथर्ववेद हम अपने सामवेद सबकी बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इनके निर्माण में 16 ऋषिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी जो शायद हम लोगों ने शायद कभी क्योंकि हमारे करिकुलम में नहीं था हमने पढ़ाया नहीं था। तो महिलाओं ने इस भारत के जिसे कहते हैं वो श्रद्धेय स्थान था कि समाज की सोसाइटी कैसे रहने वाली है तो वुमेन एम्पावरमेंट की अभी आप बात की, सही बात है, बगैर वुमेन एम्पावरमेंट के आप फैमिली एम्पावरमेंट की बात सोच ही नहीं सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। सुनामी जब आई थी, जब आपके साउदर्न स्टेट में चेन्नई में आई थी, उसके अलावा बड़ी से बड़ी विपदा, उस विपदा को झेलने के बाद पुनर्स्थापन, वापिस से रिहैबिलिटेशन की जो पावर वुमेन के अंदर है वो मैन से कई गुना ज्यादा है। ये ईश्वर ने उनके अंदर ये शक्ति दे रखी है। ये बात, इसीलिए हम मातृ शक्ति बोलते थे, ये बात हम बोल रहे हैं। पर अब मैं साइंटिफिकली आपको बताऊं तो अभी जैसे संघाई की यूनिवर्सिटी है, बेन गुरियन यूनिवर्सिटी है, ये रिसर्च पेपर सब पब्लिश होके बोलते हैं कि ये जो पावर है ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो एक फैमिली निर्माण के अंदर एक माँ की जो भूमिका होती है वो भूमिका कोई और कभी ले ही नहीं सकता है। नेगेटिविटी को काउंटर करके, जो अभी पहले दीदी बोल रही थी, पॉजिटिविटी का जो स्पार्क पैदा करने का भाव है वो तो कोई भी नहीं ला सकता है। आज हम जिस बिजली की रोशनी में खड़े हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, उसको स्कूल से निकाल दिया गया, उसे कहा गया कि भाई आपका बच्चा इतना बेकार है तो इसे पढ़ना ही नहीं आता, इसे कुछ भी नहीं आता, इसे क्या पढ़ाएंगे ये, और दूसरे बच्चों पे गलत वो कहते हैं ना एक प्रभाव डाल रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकालते हैं। उसकी माँ ने देखा, उसकी माँ चुपचाप अपने बेटे को लेके आएगी। थॉमस एल्वा एडिसन ने बोला, माँ मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? तो उसकी माँ ने बोला, बेटा उन्होंने तेरे को बोला है कि आपका बेटे के अंदर तो सारा ज्ञान है, उसे इतना ज्ञान है उसे स्कूल आने की जरूरत नहीं है, उसके पास सारा नॉलेज है, आप उसे स्कूल क्यों भेज रहे हो? और उसी थॉमस एल्वा एडिसन के अंदर जो माँ ने उसके अंदर भाव भरा, जो माँ ने उसके अंदर उजाले की दिशा दी, उस बच्चे ने आज हम सबको उजाला दिया है, ये प्रकाश दिया है। तो ये है माँ की शक्ति, ये है माँ के एक विचार, और वही माँ इस समाज में, इस हमारी संस्कृति में परिवार का निर्माण का भाव रखती है। और इसीलिए कभी कभार जब मुझे सेमिनल इश्यूज और इस चीज के जब मैं सुनता हूँ, मेरा मन काफी व्यथित होता है। मुझे लगता है हम किस ओर अपनी संस्कृति को ले जा रहे हैं, हम किन राइट्स की बात करके हम किस दिशा में अपनी संस्कृति को ले जाना चाहते हैं? क्या हमें अपनी सनातन संस्कृति जिसमें हम आए हैं, जिसमें हम शिक्षित हुए, क्या हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है? अगर अभिमान है तो हमें उस अभिमान को अपने स्वाभिमान में रखते हुए अपने आने वाली जनरेशंस को उसे देना पड़ेगा। लास्ट में बस थोड़ी सी इतनी बात कहूंगा कि हम एक्सटेंडेड फैमिली कंसेप्ट के बारे में भी सोचें। हम इम्पावरिंग दी फैमिली की बात करते हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली कंसेप्ट हमें आना चाहिए। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जैसे आज हम ये कह रहे हैं, आप सब यहाँ आए हैं तो एक परिवार भाव की वजह से आए हैं कि हम सब ब्रह्म कुमारीज में आ जाएं, तो हम सभी बहनें, हम सभी भाई आपस में एक दूसरे को परिवार भाव के साथ रहते हैं। वो भाव हम अपने समाज में तभी हम ला सकते हैं जब हम अपने साथ आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ एक परिवार भाव के साथ मिले, हमें ऐसा लगे कि उनके दुख भी हमारे दुख हैं। क्योंकि जिस तरह से हम सोचेंगे, वो सोच जब हमारे परिवार के अंदर आती है तो एक अच्छा परिवार एक अच्छा समाज का निर्माण करता है, एक अच्छा समाज एक अच्छा राज्य, और एक अच्छा राज्य मजबूत राज्य अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। तो ये सारी की सारी शुरुआत एक परिवार से होती है। तो इम्पावरिंग द फैमिली जो है बहुत ही रेलेवेंट कंसेप्ट है। लास्ट में मैं एक बहुत छोटी सी बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। दो भाई थे, उनके बीच में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा बहुत ज्यादा हो गया, उनके खेत आपस में लगे हुए थे, तो उन्होंने बोला क्या करना चाहिए, अब हमारे बीच में तो बनती नहीं। छोटे भाई को ज्यादा ही गुस्सा आया, उसने बड़े भाई और अपने भाई के जो खेत थे उसके बीच में बहुत बड़ी एक जेसीबी को बुला के खाई खुदवा दी, क्रीक उत्पन्न कर दी। उसने बोला ना तू मेरे यहाँ आएगा ना मैं तेरे यहाँ पे जाऊंगा। बड़ा भाई भी गुस्से में था, उसने बोला कुछ नहीं। अगले दिन वो सो रहा था तो सुबह सुबह उसके दरवाजे पे नॉक हुई, एक कारपेंटर ने नॉक किया। कारपेंटर था, उसने बोला कि साहब मैं तो लकड़ियों का काम करता हूँ, कारपेंटर हूँ, यहाँ काफी दिन से घूम रहा हूँ, कुछ आप काम देंगे क्या? तो उन्होंने बोला काम तो मैं दूंगा, ये जो मेरा भाई है इसने जेसीबी से हमारे बीच में एक पूरी एक खाई से उत्पन्न कर दी कि मैं उसके खेत में नहीं जा पाऊं, मैं वो मेरे में नहीं आ पाए, और उसने कुछ पानी वानी भी छोड़े ताकि हमारे बीच में ये संबंध खत्म हो जाए। उसने बोला तो मैं ये क्या करना है? उसने बोला ये सारी लकड़ियां है ना, तो उसकी पूरी ऐसी दीवार बना दे कि ना मैं उसे देख सकूं ना वो मुझे देख सके। तो उसने बोला ठीक है मैं कर देता हूं। तो सारी लकड़ियां लेके कारपेंटर चला गया। शाम का समय था, जब शाम को आया तो बड़ा भाई भी खेत पे गया, छोटा भाई भी आया, तो उसने देखा कि वो देख के आश्चर्य, उसने बोला कि इसने तो ये जो खाई इसने खोदी थी इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया है, पुल बना दिया है। तो छोटा भाई जैसे आया उसने आते ही देखा कि अरे मैंने तो खाई खोदी, मेरे भाई ने तो लकड़ियों से उसके ऊपर पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया। वो कहता भैया मैं बहुत गलत था, आपने आपके बारे में मैंने सोचा, पर आपने फिर भी इतनी बड़ी सोच रखी, देखो आपने तो पुल बना दिया, मैं आज भी आपके पास आ सकता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने कृत्य के लिए। बड़े भाई ने भी सोचा कि यार मैं कुछ और सोचा था पर इसने कुछ और किया। तो उसने कारपेंटर को बोला कि तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, भले ही मैंने तुम्हें कुछ और बोला था, तुम यहां रुक जाओ और भी मुझे कुछ काम ऐसे करने। तो उस कारपेंटर ने बोला कि मैं ऐसे यहां आपके यहां नहीं रुक सकता हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं और कितनी जगह ऐसे पुलों का निर्माण और करना है। तो मैं यही कहूंगा ये जो आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है इम्पावरिंग द फैमिली, ये वास्तव में उस पुल के निर्माण का कार्य ही कर रही है। मैं अभी पहले दो दीदियों को सुन रहा था, उन्होंने जिस तरीके से बोला, ये वास्तव में उस पुल निर्माण का कार्य कर रही है कि जिस तरह से परिवार में एकात्म का भाव आ सके, परिवार में एक अच्छी सोच आ सके, एक अच्छे संस्कार आ सके, और एक अच्छे संस्कारों के जरिए हम आने वाले एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में एक अच्छी पीढ़ी का भी हम निर्माण कर सके, उन्हें अच्छे संस्कार दे सके। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद।
माननीय भ्राता आनंद पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर रीति से हमें स्पष्ट किया कि कैसे हम अपने परिवारों को सशक्त बनाएं और फिर से हम उन्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएं जो हम चाहते हैं। और उन्होंने नारी की शक्ति का महत्व भी हमें समझाया कि नारी की शक्ति क्या होती है। मैं उन्हें पंक्तियों में ढालकर आपको सुनाना चाहती हूँ। साधारण अबला नहीं तू सर्व की कल्याणकारी है, अपने गुणों की खुशबू से तू महकाती घर की क्यारी है। भगवान भी वंदे मातरम कहे तुझ पर बलिहारी है, जग को जीवन देने वाली शक्ति का नाम ही नारी है। और अभी हम विधिवत इस सम्मेलन का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके करेंगे। तो, हाँ, उसके पूर्व मैं आदरणीय निर्मला दीदी जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं, तो मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वो गुलदस्ते एवं बैजेस से दीदी का स्वागत अभिनंदन करेंगे और आप सभी भी करतल ध्वनि से स्वागत में सहयोग देंगे। सभी हमारे मंचासीन महानुभाव मंच पर ही दीप प्रज्वलन करेंगे और नीचे भी दो दीप स्तंभ रखे जा रहे हैं। तो हमारे सभी सेशंस के वक्ता वीके और जो भी हमारे मेहमान वक्ता हैं, सभी नीचे जो स्टैंड रखे हैं उन पर दीप प्रज्वलित करेंगे। जो राइट साइड में बैठे हैं वो राइट साइड के कैंडल स्टैंड पर आएंगे, जो लेफ्ट साइड में बैठे हैं वो लेफ्ट साइड के कैंडल स्टैंड पर आएंगे। लेकिन सभी सेशंस के माननीय वक्ता वीके और जो भी मेहमान हैं वो सभी नीचे स्टेज के नीचे दीप प्रज्वलित करेंगे।
अपने मोबाइल का टार्च ऊपर करेंगे। सभी अपने अंतर हृदय में भी दिया जलाएंगे आज का ये शुभ उद्घाटन।
परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
दीप प्रज्वलन के पश्चात अब उद्घाटन के उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ बहन श्रीमती संगीता बेनीवाल जी से, जो वर्तमान राजस्थान सरकार में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन हैं। आपका बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशीलता है जो आपके कार्यों से झलकती है। आप कांग्रेस कमेटी महिला ग्रामीण की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जोधपुर शहर की पार्षद भी आप दो बार रह चुकी हैं, आपने अजमेर से ग्रेजुएशन किया और जोधपुर जेएनवी कॉलेज से आपने लॉ किया। मैं आपके लिए कहूंगी, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, जीवन तो सभी यहाँ जी लेते हैं दोस्त, आप जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो आपने अपने जीवन को अनेकों के लिए मिसाल बनाकर पेश किया है, तो आज हम आपसे इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए अनुरोध करते हैं।
ओम शांति। आज माउंट आबू ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा राष्ट्रीय सेमिनार, जिसका विषय परिवार सशक्तिकरण है। इस कार्यक्रम पर मंच को सुशोभित कर रहे परम आदरणीय दीदी राजयोगिनी डॉक्टर बी के निर्मला दीदी, परम आदरणीय भ्राताश्री बी के ब्रिज मोहन भाई, परम आदरणीय राजयोगिनी दीदी बी के शारदा जी, मंच पर विराजमान मेरी साथी व हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रेणु भाटिया जी, विराजमान ऑनरेबल श्री आनंद पालीवाल जी मेंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, विराजमान परम आदरणीय दीदी राजयोगिनी बी के चंद्रधरीजी दीदी, विराजमान राजयोगिनी बी के चंद्रिका दीदी, विराजमान सम्मानित मंच माइक संचालन कर रही डॉक्टर बी के सविता दीदी, सम्मानित मंच राजयोगिनी दीदी बी के शारदा दीदी, परम सम्मानित मंच सामने विराजमान यहाँ के परिवार के सभी सदस्यगण तथा दूर दराज से पधारी भी महिलाएं बहनें भ्राताश्री मीडिया के साथियों, मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने भली भांति क्या है परिवार सशक्तिकरण और कैसे किया जा सकता है फैमिली एम्पावरिंग, इसके बारे में बखूबी कई उदाहरणों के साथ अपनी बात रखी। मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद व आभार व साधुवाद देना चाहूंगी यहाँ परिवार को, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज ये राष्ट्रीय सेमिनार आपने रखा, जिसका हमारे राजस्थान प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरे देश में बहुत अधिक आवश्यकता थी, बैठकर बात करने की, चिंतन मनन करने की। जिस तरह से अभी दीदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कलयुग की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और इसको रोकेगा कौन, स्वयं ईश्वर को ही आना पड़ेगा। परंतु मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पूर्वज हम जैसे मानव ही थे, जब सत्ययुग की बात करते थे सोने की चिड़िया कहलाता था हमारा भारत देश, आखिर हम कलयुग की तरफ जा रहे हैं तो इसको ठीक भी हम स्वयं ही कर पाएंगे। जिस तरह से चंद्रिका दीदी ने बखूबी अपनी तीन चार बातों से कहा कि हम किन तीन चार बातों का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े, सही दिशा को चुने तो एक सफल जीवन जी सकते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि संस्कार, जो सबसे बड़ी बात होती है संस्कार, वो संस्कार एक बच्चे को अपने परिवार से मिलते हैं, फिर जिस विद्यालय में वो पढ़ता है वहां से मिलते हैं, परंतु सबसे पहले अपने परिवार से। जैसे घर में माता पिता करेंगे, बच्चा वही सीखेगा, वही उसके संस्कार होंगे। यदि वो संस्कार बच्चे के पैदा होने के बाद घर में ही हमें उस बच्चे को अच्छे संस्कार दे सके, तो मुझे लगता है कि जिस तरह का क्राइम हमारे देश में बढ़ा है, जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं हमारे सामने आती हैं, अभी जिस तरह से मेरी बहन रेणु जी कह रही थी कि हमें बहुत पता है, हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। कल भी मैं जब यहाँ के लिए आ रही थी तो डूंगरपुर का एक केस मेरे पास आया था, और इसी तरह के केस हमारे पास आते हैं। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है जब सुनते हैं 12-13 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं माता पिता और बच्चों के बीच जो गैप आ गया है, जो समय की कमी आ गई है, माता पिता दोनों आज बाहर व्यवसाय में नौकरी में काम करते हैं परंतु अपने घर का पौधे को वो नहीं सींच पा रहे। या तो बच्चे को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल या लैपटॉप हम देकर ये सोचते हैं कि बच्चे को मोबाइल और लैपटॉप बहुत बखूबी चलाना आ रहा है, हमारा 6 साल का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम ये जानने का प्रयास नहीं करते कि बच्चा उस मोबाइल में, उस लैपटॉप में आखिर देख क्या रहा है। तो बहुत आवश्यक है इसमें माता की भूमिका और साथ साथ पिता की भूमिका बहुत अहम है कि हम बच्चों की किस तरह से मॉनिटरिंग कर सके, किस तरह से उसे सही संस्कार की ओर आगे बढ़ा सके। मैं जब कल यहाँ पर आई, और आप सब जो यहाँ पर आए हो, हम सबको एक अलग ब्लेसिंग्स है, एक अलग वरदान मिला है बाबा का कि आज हम यहाँ आए हैं, यहाँ बात कर पा रहे हैं। जब मैं कल यहाँ पर सब देख रही थी, मैं पांडु भवन भी गई, वहां पर जब देखा कि बाबा इस झूले पर बैठकर विचार करते थे, बाबा इस कक्ष में बैठकर अपने विचार रखते थे, यहाँ मेडिटेशन करते थे, इतने सब लोग कल वहां पर थे, काफी तादाद में लोग थे, परंतु फिर भी एक शांति थी। आज व्यक्ति के पास धन है, माया है, दौलत है, परंतु शांति नहीं मिल पा रही। वहां पर जो शांति थी, उस शांति को मैंने अब्सॉर्ब किया, मैंने सहा। आज यहाँ कार्यक्रम था, कई बार मन में विचार आया कि मैं जोधपुर हूँ, क्यों ना कल सुबह, आज सुबह ही जल्दी निकलकर कार्यक्रम अटेंड करूं, अपना स्पीच देकर वापस निकल जाऊं, परंतु बाबा ने मुझे कल बुलाया। एक वो शक्ति थी जिसने मुझे सोचा, समझाया कि नहीं, हमें आज जाना चाहिए। तो मैं कल आई, कई सारी यहाँ की पॉजिटिविटी मैंने देखी जो मेरे अंदर मैं ले पाई, और मुझे समझ आया कि कैसे सब दीदियों के जब संपर्क में आए, हमेशा चेहरे पे मुस्कान, चेहरे पे ओज, नम्रता, इन सब की काफी कमी है, धैर्य, ये सब दीदी लोगों में देखा, इनकी तपस्या देखी। कई लोगों से पूछा कि वो कहाँ से हैं, कब से सेवा में हैं, कब से इन पूजा पाठ में हैं। बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता है, इच्छा शक्ति पे कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर जो भी दीदी हैं, जो भी भ्राताश्री हैं, उन्होंने जो इच्छा शक्ति पे, अपनी विल पावर पे जो कंट्रोल किया है, मैं आप सबको बहुत बहुत सल्यूट करती हूँ। वाकई में ये एक महान काम आप जो कर रहे हैं, उसके द्वारा आपके जो दिनचर्या है, वो दीदी जो मेरे साथ थी, मेरे परिवार से भी सीमा जी जो यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उनसे मैं पूछा कि कैसे दिनचर्या शुरू करते हैं। तब बताया कि 2:30 बजे हम अपना मेडिटेशन करते हैं, 4 बजे जब एकदम शांति होती है उस वक्त हम अपना विश बांधते हैं। तो इतना कठिन, इतनी चुनौतियाँ यहाँ पर हैं, परंतु इन लोगों को ये दिनचर्या बहुत अच्छी लगती है, तभी उन चेहरे पर वो ओज दिख रहा है, ना कहीं ब्यूटी पार्लर पर जाकर, ना कोई क्रीम लगाकर, अपितु अपने अंदर जो भाव है, अपितु अपने अंदर जो पॉजिटिविटी है, उसके बदौलत आज मंच पर विराजमान है हमारे बीच में निर्मला दीदी। आपकी उम्र देखिए और आपके चेहरे का ओज देखिए, हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आपका जो डेडिकेशन है, जो आपने त्याग किया, जो आपने तपस्या की, हम सौभाग्यशाली हैं आज आपके साथ मन शेयर कर रहे हैं। आपने बाबा के साथ में भी जो उनका बहुत करीब से देखा जाना, वो सब आज हमें देखने को और सुनने को मिल पा रहा है। ये सब चीजें हम यहाँ से जाएं तो हमारे आस पड़ोस में जरूर बताएं, परिवारों को जरूर बताएं, बच्चों को जरूर बताएं, आने वाली जनरेशन को जरूर बताएं, ताकि हमारे देश में जो इस तरह की कलयुग की हम बात कर रहे हैं, जो क्राइम बढ़ गया है, जो बातें हमारे सामने आ रही हैं, वो सब कहीं ना कम हो। आज दादा दादी नाना नानी की कहानियां नहीं रही। हम जब छोटे थे तो रात को सोते थे तो वही सुन के सोया करते थे, परंतु आज उसकी जगह ले ली है मोबाइल ने, वो उसको सुनकर बच्चे सोते हैं, तो हम गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगी और कहना चाहूंगी, एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी इस परिवार का कि जिन्होंने आज बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ यहाँ पर बुलाया। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज ये पूरी जो संस्था चल रही है, पूरा जो ये विश्वविद्यालय चल रहा है, इसमें भी आज इतनी दीदियां हैं, ये भी सब व्यवस्था में हैं, तभी कहीं जाकर आज इतना अच्छा प्रसाद, स्वादिष्ट प्रसाद हमें मिल पा रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था हमें मिल पा रही है। उसी तरह घर में हमारी माताएं, जो हमारी दादी बुजुर्ग, जो सास होती हैं, वो सब आज घर चलाती हैं, तब कहीं जाकर हमें वो एक अच्छा वातावरण घर में मिल पाता है। हम चाहे कहीं भी घूमने चले जाएं, पर जब घर आते हैं तो हमको एक सुकून मिलता है। वो सुकून उसी घर में मिल पाता है जहाँ पॉजिटिव वाइब्स हो, जहाँ कोई लड़ाई झगड़े ना हो, प्रेम हो, स्नेह हो, उसी परिवार में और उसी घर में मिल पाता है। मैं भी आपसे एक छोटी सी बात साझा करना चाहूंगी। 2004 में विवाह के उपरांत सास ससुर ने मुझे राजनीति में लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़ाया। जोधपुर भगत की कोठी में जहाँ हमारा घर था, वहीं पर मुझे कहा कि तुम पढ़ी लिखी हो, समाज सेवा में पार्षद के रूप में अपना कार्य शुरू करो। मैंने पार्षद के रूप में विकास कार्य करवाया। निर्मला दीदी कह रही थी कि राजनीति क्षेत्र में हो, काफी अप्स एंड डाउन होते होंगे, तो मैंने दीदी को बड़े गर्व से कहा कि 20 साल से साफ छवि व ईमानदारी से अपनी कार्यशैली मैंने बना रखी है। तो ये सब घर के लोगों का ही दिया हुआ है। मेरे ससुर जी हमेशा कहते थे कि बेटा राजनीति में कदम रखा है, कई प्रलोभन होंगे, घर में दाल रोटी की कमी नहीं, नाम कमाने के लिए आगे जाना है, लोगों की सेवा करने के लिए आगे जाना है। वो चीज मेरे जहन में हमेशा रहती आई है। 2013 में उत्तराखंड में जब सास ससुर बहुत बड़े शिव के भक्त थे मेरे ससुर जी, जहां जहां वो जज थे, जहां जहां उनकी ट्रांसफर होती थी, वो वहां पर एक शिव मंदिर जरूर बनवाते थे। कई शिव मंदिर जहां जहां उन्होंने ट्रांसफर हुई तो वो शिव जी के दर्शन करने ही जा रहे थे। नीचे उतरे थे 2013 में उत्तराखंड त्रासदी में, किसी और राहगीर को पुनः ऊपर चढ़कर दर्शन कराने जा रहे थे। स्वयं के दर्शन करने के बाद इतना जोर का प्राकृतिक आपदा आई कि सास ससुर दोनों नहीं बच पाए। 16 जून की घटना याद आती है, तब उनका एक फोन मेरे पास आया था और उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा हम सब सुरक्षित हैं और जो परिवार हमारे साथ गया है उनके परिवार को इत्तला कर देना कि हम सुरक्षित हैं। मैंने पूछा ससुर जी से कि क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, तुम डरना मत, घबराना मत, हम सुरक्षित हैं। तब मैंने टीवी खोली, थोड़ी देर बाद जब आया कि वहां बादल फट गया है, मुझे लगा ससुर जी ने कहा है हम सुरक्षित हैं, वो जरूर लौटेंगे। उनका इंतजार किया, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, फिर कई दिन बीत गए, आज तक वो नहीं लौटे। पर उनकी बात हम सुरक्षित हैं। आज तक जब भी मैं अपना विश्वास डगमगाती हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि उन्होंने कहा था हम सुरक्षित हैं, तुम अपना कार्य करते रहो। तो उस पथ को मैंने नहीं छोड़ा, उस पथ पर मैं आगे बढ़ती रही और मैं कहूँगी कि आज भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कृपा दृष्टि है कि मुझे यहाँ तक आना हुआ और मुझे यहाँ पर इतनी सारी वाइब्स मिली। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी का, यहाँ के संस्थान का, जिन्होंने इतने स्नेह के साथ भोजन में स्नेह डालकर जो ब्लेसिंग्स दी, जो अपनी बात बताकर ब्लेसिंग्स दी, जो दिनचर्या बताकर ब्लेसिंग्स दी, जो बाबा क्या करते थे, बाबा के क्या अनुभव थे, बाबा की जो बातें थी वो सुनने को जो मुझे मिला, वाकई में वो मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। और महिला बहनों को भी कहूँगी कि जब हम अपने घर को देखें और अपने परिवार को, अपने बच्चों को वही संस्कार दें जो हमारे बड़े बुजुर्ग सास ससुर देते आए हैं, ज्वाइंट फैमिली जो समाप्त सी हो गई है, परंतु मैं कहना चाहूँगी कि जिंदगी में हर जगह थोड़े टफ टाइम के साथ अच्छा टाइम शुरू होता है। तो जब हम नवविवाहित हों तो थोड़े से टफ टाइम को सहन करें, उसके बाद अच्छा समय जरूर आता है। तो थोड़ा संघर्ष, थोड़ी रोका टोकी सब होती है, परंतु वही प्रेम होता है, वो उनकी चिंता होती है, वो परिवार के बड़े बुजुर्गों की परवाह होती है, उसको हमें गलत नहीं लेना चाहिए और एक सशक्त परिवार बनाकर रहना चाहिए। आज माताएं बहनें हैं, चाहे परिवार में, मैं तो कहूंगी चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कितने भी बड़े पदों पर आसीन हो, परंतु घर की मुखिया तो महिला ही होती है। घर कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, वो आप ही करती हैं। तो आगे वाले जो जनरेशन है उसकी बागडोर आप ही के हाथों में है, तो उसको सही दिशा में आगे बढ़ाएं। सुबह उठते ही जैसे यहाँ पे बताया कि धन्यवाद देने की बात होनी चाहिए कि बाबा आपका धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर दिन मुझे आज फिर से दिखाया। रात के भोजन में धन्यवाद होना चाहिए कि आज जो हमें मिल रहा है, हमें अपने नीचे से बारे में सोचना चाहिए कि उनको वो भी नहीं मिल पा रहा। तो पूरे दिन हमें धन्यवाद देना चाहिए इस जीवन के लिए और मिले हुए भोजन के लिए और जो दिनचर्या है, जो हम पे प्रेम स्नेह है, उन सब के लिए बाबा को धन्यवाद देना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ये कलयुग जो हम बात कर रहे हैं वो वापस सतयुग में बदल जाएगा और प्रेम स्नेह, भाईचारा, अपनत्व, ये सब जो खत्म सा हो गया है, एक बार पुनः हम लोगों के बीच में आएगा और हम जो आने वाली पौध है, जो जनरेशन है, उनको ये सब दे पाएंगे। अपनी बात को मैं विराम दूंगी और कुछ पंक्तियों के साथ कहूंगी, खासकर मेरी महिला बहनों के लिए। कोमल है कमजोर नहीं तू, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे बोलने का अवसर दिया और आमंत्रण किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अपने बहुत ही सुंदर अनुभवों से हमें प्रकाश देते हुए मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन संगीता बेनीवाल जी का। आपने विशेष आध्यात्मिक संस्कार बच्चों को देने का महत्व दिया, क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन में मूल्यों का स्रोत है। आध्यात्मिकता से ही हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर तो सर्व गुणों के भंडार हैं, और जब हम ईश्वर के साथ अपने मन की तार जोड़ते हैं तो उन शक्तियों को जीवन में अपनाना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। कई बार हम करना चाहते हैं लेकिन हम महसूस करते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है, वो संयम हमारे अंदर नहीं है। तो वो शक्तियाँ और वो गुण हमारे में हम भर पाएं, वो हमें ईश्वर से प्राप्त होता है और फिर वही हम बच्चों को भी दे पाते हैं। अभी मैं अनुरोध कर रही हूँ हमारे वरिष्ठ भ्राता परम आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी से। आप विद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, आप हेडक्वार्टर्स के
फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, ब्रह्मा कुमारीज के आप चीफ स्पोक्स पर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर की मैनेजमेंट कमेटी के आप सीनियर मेंबर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, एजुकेशनल सोसाइटी के राजीवा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के, दिल्ली एनसीआर जोनल सर्विसेज के आप डायरेक्टर इंचार्ज हैं और ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम के आप प्रिंसिपल एडवाइजर हैं और वहां ही एक जॉलीवुड स्टूडियो है अपना जिसके भी आप डायरेक्टर हैं। आपने सोशल स्पिरिचुअल थीम्स पर कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं। आप प्यूरिटी जो हमारी इंग्लिश मैगजीन रही पत्रिका रही है उसके आप एडिटर भी रहे हैं और पांचों ही महाद्वीपों में आपने अनेकों आत्माओं को अपने अनुभवों से लाभान्वित किया है। आप लगभग 60 वर्षों से इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। 1973 में आपने अपना जीवन समर्पित किया। आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपने पूर्व में समर्पित होने से पूर्व 17 वर्षों तक फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में डिप्टी फाइनेंस मैनेजर के रूप में कार्य किया और आपके लिए मैं कहूंगी कि आपके अंदर रमणीकता और गंभीरता का बहुत सुंदर संतुलन है। ज्ञान के गुहे राज्यों को आप रमणीक रीति से बहुत सुगमता से स्पष्ट कर देते हैं। कुछ पंक्तियों में मैं कहूंगी, उमंग उत्साह से रहते हैं सदा भरपूर, आलस्य अलबेलापन आपसे है कोसों दूर, योग से शक्ति भरते मुख से करते ज्ञान दान, उम्र का नहीं है आपको भान। आप 90 वर्ष की आयु है आपकी, आप समझ नहीं सकते कि आप 90 वर्ष की आयु के हैं, तो उम्र का नहीं है आपको भान, आप हैं प्रभु के यज्ञ की शान। आदरणीय भ्राता ब्रजमोहन जी,
ओम शांति। मंच पर आसीन बहनों और भाइयों, और आज की सभा में उपस्थित इस महिला कॉन्फ्रेंस के बहनों और भाइयों, मैं आपको 2-3 खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। पहली खुशखबरी तो यह है कि परिवार का सशक्तिकरण जो आज का विषय है, तो ब्रह्मा कुमारीज ने सारे विश्व में 10 लाख परिवारों का जो सशक्तिकरण जिसको कहा जा सकता है वो किया हुआ है। बहन जी ने तो आपको बताया था 40,000 ब्रह्मा कुमारी से लिख है, आपने बताया था ना, उसी को रिपीट किया मैंने तो। लेकिन 40,000 ब्रह्मा कुमारी ने किया क्या है कि सारे विश्व के सभी महाद्वीपों के सभी प्रकार के 10 लाख परिवारों का सशक्तिकरण किया। तो ये पहली खुशखबरी है। दूसरी बात कि परिवारों का सशक्तिकरण कितने परिवारों का, तो वास्तव में तो सारी विश्व एक परिवार है और सारी विश्व परिवार के सभी परिवारों का जब सशक्तिकरण हो वो ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य है और वो बहुत जल्दी होने वाला है। आपको आश्चर्य तो लगेगा क्योंकि जितने भी हमने सशक्तिकरण के रास्ते में बाधाएं बताई हैं, मोबाइल फोन का जिक्र कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में चेंज है, माता, वो सब चीजें मानव उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको रोक नहीं सकता, ना समाज रोक सकता है। सब चाहते हैं लेकिन नहीं रुकेगा। ये कलयुग है, कलयुग को अपने अतीत पर जाना ही है, लेकिन परमपिता परमात्मा जो ही वास्तव में ऐसे विश्व परिवार में ऐसे परिवार रचते हैं जो जन्म जन्मांतर के लिए युगों तक वो ऐसे सात्विक परिवार हों, उसके बारे में ब्रह्मा कुमारी आपसे शेयर करती हैं। आज मंदिरों में उन परिवारों की मूर्तियां हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम देवी देवताओं का नाम लेते हैं तो परिवार होता है, कभी हमने सिंगल नहीं कहा। अन्य धर्म स्थापकों को हम अकेला भी कह सकते हैं, जैसे सन्यासी हैं या कोई और है, लेकिन पारिवारिक रूप में देवी देवता और उनकी मूर्तियां हमारे भारत देश में हैं। हम जानते हैं भारत देश को भी भारत माता कहते हैं, ये मदरलैंड है। गंगा को भी माता कहते हैं, गीता को भी माता कहते हैं, गौ को भी माता कहते हैं। तो ये जो भारत माता की जय है या वंदे मातरम है, तो परमात्मा ने पहले तो ये बात हमको स्वीकार कराई है कि परिवार मीन्स माता, क्योंकि बिना माता के ना तो कोई पिता हो सकता है, ना कोई संतान हो सकता है बच्चा, ना कोई बहन हो सकता, ना भाई हो सकता। और परमात्मा ने भारत की माताओं के द्वारा पहली बार नहीं, अनेक बार सारे विश्व को एक, जिसको एक्सटेंडेड फैमिली कह रहे हैं, वैश्विक परिवार बनाया, और उसके अंदर ही बाकी दिव्य परिवार बनते हैं जिसको हम दैवी परिवार कहते हैं। एक होते हैं दैवी परिवार और एक होते हैं आसुरी परिवार। गीता का 16वें चैप्टर में लिखा हुआ है। तो जो आसुरी परिवार हैं उसका भाव अर्थ ये होता है कि उनके अंदर विकृतियां आ जाती हैं, बिहेवियर में उनके अंदर विकार आ जाते हैं, जिसको हम काम क्रोध लोभ अहंकार कहते हैं। और भगवान ने ये करवाया था, उसका सबूत क्या है कि भारत की सभी नदियों के नाम मातृशक्ति पर है। आप गौर कीजिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, एक का नाम ब्रह्मपुत्रा भी है। भाव अर्थ ये है, ये उसको परपेचुएट करने के लिए, जैसे हम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहते हैं, उनके उस कर्तव्य को सदा हम याद रखें, उसके लिए ये यादगार है। और भारत में देवियों के नवरात्रे दो बार मनाए जाते हैं, शिव शक्तियां कहा जाता है। तो वो कार्य अब पुनः हो रहा है। तो सबके अंदर जो उम्मीद है, लेकिन कैसे होगा, वो ब्रह्मा कुमारी, भगवान ने ही ब्रह्मा कुमारी को स्थापित किया है, बहन जी ने अच्छी तरह से बताया। और ब्रह्मा कुमारी वो हैं जिनका कर्तव्य भी ये है कि परिवारों को दैवी परिवार बनाना और उनको कायम रखना। आज के समाज ने क्या किया है, हम फैमिली बना ही नहीं सकते, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। और मजबूरी के कारण, चाहे सोशल कारण है, चाहे फाइनेंशियल कारण है, घर वाले कहीं रहते हैं, उनके संतान जॉब करने कहीं जाते हैं, फिर पति भी जॉब कर रहा है, पत्नी भी जॉब कर रही है, ये रियलिटी है। अब हम इसको ये नहीं कह सकते क्यों किया, कैसे हुआ, ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए जब तक सारा विश्व फैमिली नहीं होगा, हम समझें कि हम अपने देश में फैमिली सिस्टम बना लेंगे, नहीं। ये तो भारत का सौभाग्य है कि आज भी अगर सारे विश्व में कहीं फैमिली सिस्टम का थोड़ा बहुत सेम्बलेंस है, अर्थात है, वो भारत में है, और इसी कारण से भारत टिका हुआ। और भारत की महिलाओं में हमने दो तीन बहनों के अनुभव सुने, ऐसी बहनें हैं जिस कारण से अभी भी पूरा बेड़ा गर्क नहीं हुआ है। लेकिन हम जानते हैं सबको ऐसा होना परमात्मा की ही शक्ति है। तो मैं आपको यही खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, भगवद गीता में भगवान ने कहा हुआ है कि जो बुरे कर्म करने वाले हैं, दुष्कृत करने वाले हैं, उनका विनाश होगा, वो अपना विनाश खुद ही कर लेंगे। इंग्लिश भाषा में कहा जाता है ईविल डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ, पाप का घड़ा भरकर फूटता है। आज जितने भी ऐसी आज अपोजिशन वाली शक्तियां हैं जो समझती हैं कि दुनिया में कभी पुनः अच्छाई आ ही नहीं सकती, लेकिन कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, तो भगवान कहते हैं मैं तो ला सकता हूं, तो ऐसे विनष्ट हो जाएंगे, जो बचेंगे परमात्मा उनको सात्विक बना करके, आसुरी संपदा को बदलकर दैवी संपदा बना करके डेफिनेटली और बहुत जल्दी ही हम समझते हैं कि बहुत सारे हमारे यंग एज वालों के देखते देखते ही ये परिवर्तन आने वाला है। और ऐसा दिन दूर नहीं है जब पुनः भारत के, जैसे हम गाते हैं कि गीत बने हुए हैं, डाल डाल पे सोने की चिड़िया करेगी बसेरा, सत्य और अहिंसा और धर्म का लगेगा घर घर फेरा। तो सत्य और अहिंसा के आधार पर यह होता है, सत्य अर्थात मैं आत्मा हूं। चंद्रिका बहन ने बताया कि जब से हमने शरीर मानना शुरू किया है गिरावट आई है, और अहिंसा का मतलब क्या है कि पांच विकार ही हिंसा है, काम क्रोध लोभ मोहंकार। और आज सबसे बड़ी समस्या अगर मेरे से पूछें वो है आज नारी के सम्मान पर खतरा। ये कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता बसते हैं। अब इसको उल्टा कर लीजिए कि जहां नारी की इज्जत को पल पल पर खतरा हो, कितना भी कोई प्रोटेक्शन करे, आज सबसे बड़ी समस्या काम विकार के फैलने की है, और वो भारत देश में काम विकार के फैलने की है। ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और आज आप काला पेंट सारे वर्ल्ड का भी इंपोर्ट कर ले तो बुरी नजर वाले उससे ज्यादा है। तो ये दुर्गति जो हुई है, भगवान ने ही इसको आके परिवर्तित किया था। आप गीता को पढ़ेंगे तो प्रथम बात उसमें लिखी हुई है काम महाशत्रु है। तो आज काम विकार की आग को भड़काने के लिए, चाहे आप मोबाइल देख लें, चाहे सोसाइटी के सिस्टम देख लें, बहन जी होटल की बात कर रही थी, आप फरीदाबाद में या किसी एरिया में किसी भी होटल में जाके देख लें, यही कुछ हो रहा है। इस वास्ते इसको रोकने के लिए परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। तो ब्रह्मा कुमारी का एक स्लोगन है, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्र बनो योगी बनो, और आइदर प्योरीफाई और पेरिश। कि अब ऐसा समय आने वाला है कि पवित्र आत्माएं ही इस दुनिया में बचेंगी और बाकी सब अपने आप को विनाश कर लेंगे, जिसके चिन्ह आप देख रहे हैं विनाश के, कि मानव ने आज तक ऐसा इतिहास में नहीं था, पहले साइकिल के एंड में था कि अपने विनाश के लिए परमाणु शस्त्र मिसाइल तैयार कर लिए हैं। अब ना केवल तैयार कर लिए हैं, अब धीरे धीरे उनको चलाने के समीप भी पहुंच रहे हैं। शास्त्रों में मूसल लिखा हुआ, यादवों ने अपने पेट से मूसल निकालकर अपने कुल का विनाश किया था, है वो मिसाइल्स। तो ये हम सब सीन देख रहे हैं, पाप का नाश होने वाला है। सात्विक आत्माएं देवी देवता के रूप में स्वच्छ परिवार, स्वस्थ परिवार, दैवी परिवार के रूप में दुनिया में आने वाली हैं। यही खुशखबरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ओम शांति।
आदरणीय ब्रजमोहन भाई साहब का बहुत धन्यवाद। आपने हमें मार्गदर्शन दिया कैसे हम आसुरी परिवार से अपने परिवार को दैवी परिवार बना सकते हैं और उसके अंदर ऐसी क्या क्या कमियां हैं। तो आसुरी वृत्तियों से हम दैवी वृत्तियों की ओर कदम बढ़ाएं उसके लिए आवश्यकता है हम अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करें। हमें ये भी कहा गया कि हम स्वयं को पहले परिवर्तन करें, स्वयं का सशक्तिकरण करें, हमारे स्वयं की ही जिम्मेवारी है। तो फिर उसके लिए हमें आवश्यक है कि हम आत्म निरीक्षण करें, आत्म अवलोकन करें। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने में ला पाते हैं और उसे लाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो हमें परमात्मा से मिलती है। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय शारदा दीदी को जो हमें इस रूहानी यात्रा की ओर यानी मन की यात्रा ईश्वर की ओर जिसे हम राजयोग कहते हैं उस यात्रा पर ले चलेंगे। आप पिछले 35 वर्षों से अंबावाड़ी अहमदाबाद और उससे संबंधित सेवा केंद्रों की संचालिका हैं। आप वर्तमान में महिला प्रभाग की भी राष्ट्रीय संयोजिका हैं। 52 वर्षों से भी अधिक समय से आप समर्पित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आप जयपुर से विद्यालय के संपर्क में आई, आपने बीएड किया, एमए किया और उसके पश्चात 21 वर्ष की उम्र में आपने अपना जीवन समर्पित किया। प्रारंभ में 5 वर्षों तक आप विदेश सेवाओं पर रहे जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में आपने सेवाएं दी और वर्तमान में आप गुजरात में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके लिए कहूंगी सोने से चमक आप में, हीरे से दमक आपने, जो आपका सानिध्य पा जाए वो सुख आनंद की लहरों में लहरा जाए। तो हम आपके साथ अभी अंतर यात्रा पर चलेंगे।
ओम शांति। आज के सुमंगल प्रभात और उसमें हमारे लर्नेड स्पीकर्स चेयरपर्सन इनॉग्रल सेशन के बहुत सुंदर हम सभी विचार सुन रहे हैं फैमिली एम्पावरमेंट के लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कल से जब से आप यहाँ हैं इस ज्ञान सरोवर के वाइब्रेशंस, इसका वायुमंडल, इसका माहौल हर एक को एम्पावर कर रहा है क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। विश्व को एम्पावर करना है, फैमिली को एम्पावर करना है तो पहले स्वयं को एम्पावर करने की आवश्यकता है। मैथिली शरण गुप्त के वो शब्द स्मृति में आ रहे हैं, मैं संदेश धरा पर नहीं स्वर्ग का लाया पर इस वसुधा को ही स्वर्ग बनाने आया। हम सब बड़े प्यार से कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। लेकिन ये अनुभूति ये भावना तभी जागृत होगी। जैसे कि हम अपने पूर्व वक्ताओं से सुन रहे थे, सेल्फ की रियलाइजेशन, गॉड की रियलाइजेशन, जब वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली होगी, और वन वर्ल्ड फैमिली जब सबके प्रति हमारी आत्मिक दृष्टि, आत्मा आत्मा भाई भाई, एक रूहानियत की दृष्टि और एक ये अंदर में भावना हो, हम एक पिता परमात्मा की संतान है और अपनी ट्रू सेल्फ, अपने सत्य स्वरूप, मैं आत्मा हूँ। प्रातः है मेडिटेशन सेशन में आपको आत्मा का बहुत अच्छी तरह से परिचय मिला, और कुछ समय के लिए आपने सेल्फ रियलाइजेशन की प्रैक्टिस भी की। मेडिटेशन शब्द बहुत कॉमन हो गया है, जो मेडिटेटिव लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पॉन्डर, विचार, सोच, और संस्कृत की युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है योग, ध्यान, जोड़, संबंध, किसका और किसके साथ, आत्मा का परमात्मा के साथ, जो सेल्फ को एम्पावर करती है, वैल्यूज जीवन में धारण कराती है। मेडिटेशन हमारी सोच को, हमारी दृष्टि को, हमारी वृत्ति को परिवर्तित करती हुई हर एक के प्रति हमारे अंदर शुभ भावना और शुभ कामनाओं को भरपूर करती है। तो चलिए कुछ समय के लिए हम अपने अंतर मन की उस यात्रा की ओर चलें, जो यहाँ बैठे हुए भी हम उस एक सुखमय शांति के स्पंदनों से भरपूर, पवित्रता के वाइब्रेशन से भरपूर उस महसूसता में चलेंगे, जहां सिर्फ मैं, आत्मा और वह परम ज्योति, जिससे हम अपने में एनर्जी, पावर और शक्तियां भरपूर करेंगे, आपको कुछ शब्द सजेस्ट करती जाएंगी। आप न सिर्फ सुनिएगा, लेकिन सुनते सुनते उसके साथ अंतर मन की एक यात्रा करते चलिए और अनुभव कीजिए स्वयं को एक शक्तिशाली संकल्प, एक सोच दीजिए कि इन पांच तत्वों के इस शरीर में भ्रकुटि के मध्य एक दिव्य ज्योति चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान है, और वो आत्मा अपने अनादि स्वरूप में अनेक गुणों और शक्तियों से एम्पावर्ड है। वो शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप है ये मन और बुद्धि। इन अनादि गुणों पर एकाग्र होता हुआ स्वयं में इन गुणों का, वैल्यूज का आह्वान कर रही हूं। आत्मा के विचार स्व पर एकाग्र हो गए हैं और मुझ आत्मा के परमपिता परमात्मा जो शक्तियों के परम स्रोत है, ज्योति बिंदु शिव बाबा, उनसे सर्व शक्तियां और सर्व गुणों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं महसूस कर रही हूं मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, आत्मबल, आत्मविश्वास भरपूर होता जा रहा है। आत्म अनुभूति ने परमात्मा शक्तियों की गहन अनुभूति करा दे, उस स्वरूप में स्थित कर दिया है मुझ पे वो हिम्मत, साहस भर दिया है। कि इसी प्रकार से ध्यान केंद्रित करने से सेल्फ को एम्पावर करते हुए परिवार तो क्या, सारा विश्व जो मेरा परिवार है, पुनः सुख शांति पवित्रता अहिंसा से भरपूर हार्मोनियस स्वर्ग भूमि, देव भूमि बन जाएगी। ऐसी अनुभूतियों को स्वयं में संजोते हुए इन शक्तियों को
स्वयं में समाते हुए स्वरूप बनते जाइए और जहां भी आप कदम रखें यही वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाने का शक्तिशाली महान कर्तव्य करते हुए सर्व को एम्पावर करते रहिए।
गहन शांति की अनुभूति और सेल्फ रियलाइजेशन कराने के लिए आदरणीय शारदा दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। आशीर्वचनों से हमारी झोली भरने के लिए मैं अनुरोध कर रही हूँ परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी से, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका हैं, ज्ञान सरोवर परिसर जहां आप हार्मनी हॉल में बैठे हैं, इस परिसर के आप डायरेक्टर हैं, आईटी प्रभाग जो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी विंग है अपनी, उनकी आप अध्यक्षा हैं, और इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक के 15 देशों के सेवा केंद्र हैं जिसमें चाइना, जापान, हांगकांग, मलेशिया, वियतनाम आदि देश शामिल हैं, 72 सेवा केंद्रों के साथ साथ 56 उप सेवा केंद्र और 4 रिट्रीट सेंटर की भी आप निर्देशिका हैं। आप 1962 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए मुंबई में, जहां आपने मेडिकल की पढ़ाई की, एज ए डॉक्टर आपने प्रैक्टिस भी किया। 10 वर्षों तक आपने मुंबई में दोनों ही डबल डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दी, और उसके पश्चात 1971 में आपका लंदन जाना हुआ जहां आप सेवाएं प्रारंभ करने के निमित्त बने। 5 वर्षों तक वहां रहने के पश्चात आप 1978 में ऑस्ट्रेलिया गए, वहां भी आपने ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ की, उनको स्थापित किया, और काफी वर्षों तक आपने यही एशिया पैसिफिक देशों में रह करके अपनी सेवाएं प्रदान की, और वर्तमान में पिछले 15 वर्षों से आप ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निर्मला दीदी के लिए मैं कहूंगी, निर्मलता स्थिरता की हो मिसाल, नहीं जग में आपका कोई सानी है, लुटा रही वरदान सभी पर, बनकर महादानी वरदानी हो। तो आदरणीय निर्मला दीदी से हम आशीर्वचन लेंगे।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित माननीय वक्तागण तथा सभा में उपस्थित सभी श्रोता, वक्ता, बहन और भाई, आपने दो दिन से शांति का, शक्ति का अनुभव किया होगा।
और मेडिटेशन ये एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम कई बातें करना चाहते हैं पर तो सरकमस्टेंसेस और व्यक्तियों के कुछ संपर्क के कारण हम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब अपने को एम्पावर करेंगे तो नेचुरली परिवार को भी मदद कर सकेंगे। और परिवार की पालना मुख्य माताएं करती हैं। 1936 में जब ब्रह्मा बाबा ने ये संस्थान शुरू की, उस समय नारियों का कुछ मान नहीं था। नारी को अबला समझते थे और नारी नरक का द्वार है, नारी मारपीट के अधिकारी है, ऐसे ऐसे बताते थे। तो ब्रह्मा बाबा ने माताओं को आगे रखा। आज हमारे 95% सेवा केंद्र बहने चलाती है। बाबा ने उन्हें शिव शक्ति का टाइटल दिया और अपने जिंदा होते वो मातेश्वरी सरस्वती को इस संस्था की हेड बनाई और सबको सशक्तिकरण कराने के लिए बाबा ने 14 साल उन्हों को ज्ञान और योग में प्रवीण किया और आप समान बनाया। तो जब ब्रह्मा बाबा ने अपने शरीर का त्याग किया तो मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी को इस संस्था की हेड्स बनाई गई। और वैसे कहा जाता है कि गुजराती में कहते हैं चार मड़े चोटला वारे गरना ओटला, अर्थात दो स्त्री साथ में रह नहीं सकती, चाहे सासू बहू चाहे ननंद भाभी आदि आदि। परंतु बाबा ने 400 भाई बहनों को एक ही भंडारे में खाना, एक ही आश्रम में रहना और आपस में उनका इतना प्यार था जो उन्होंने इस संस्था की दौर संभाल ली। तो बाबा ने सचमुच माताओं को आगे बढ़ाया और माताओं ने बहनों ने समझा कि हमारे में छिपी हुई शक्ति है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए सब कुछ संभव है। तो मैं अपना भी अनुभव सुनाएंगी कि 40s 50s में जब मैं बड़ी हुई, हम कहाँ भी जाती थी नए स्थान पर, तो हमारा चाचा या कजिन ब्रदर या भाई हमारे साथ आता था। मैं मेडिकल इंटरव्यू देने गई, तभी भी मेरा कजिन भाई साथ में था। और जब से ये ज्ञान योग का अभ्यास किया तो 1971 में मैं अकेली लंदन सेंटर संभाला। नया देश, नई लैंग्वेज करके हम मेडिकल स्टडी तो इंग्लिश में की थी, परंतु आपस में तो हम इंडिया में इंडियन भाषा में ही बात करते थे, तो लेक्चर करना इंग्लिश में और इधर उधर जाना, नए स्थानों पर जाना, भाषण करने, क्योंकि एक बार कोई भाई बहन हमारे साथ आते थे फिर कहते अभी तो आपको मालूम है कैसे जाना है, आप जा सकते हो। तो इतनी करेज आ गई जो मैंने अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में अकेले चक्कर लगाया। तो कहने की बात है कि बाबा जब हमें जिम्मेवारी देते हैं तो साथ साथ शक्ति भी देते हैं, और वो शक्ति द्वारा हम सिर्फ अपने परिवार का नहीं परंतु विश्व परिवार का कल्याण कर सकते हैं। ये हमने खुद के जीवन में अनुभव किया कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा में, क्योंकि एशिया में तो कोरिया की भाषा अलग, जापान की भाषा अलग, चाइना की भाषा अलग, कई देशों में अलग अलग भाषा होती है, परंतु लकीली ट्रांसलेशन करने वाली कम से कम एक बहन मिल जाती थी और हम टूर कर सकते थे, सेंटर स्थापन कर सकते थे। तो ईश्वर की ये लीला है जो बहनों में इतनी शक्ति भर दी। ओम शांति।
आदरणीय निमला दीदी जी ने अपने जीवन के बहुत सुंदर अनुभव हमारे सामने रखते हुए कहा कि कैसे परमात्मा की शक्ति हमें शिव शक्ति बना देती है और हमारे लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता, जैसा कि वो अपने जीवन में कर पाए। अब मैं अनुरोध करती हूँ बहनों से, हमारे मंच के माननीय प्रभु वक्ताओं का शॉल और प्रसाद देकर के सम्मान और अभिनंदन करेंगे। भ्राता आनंद पालीवाल जी को आदरणीय चक्रधारी दीदी जी शॉल पहनाएंगे और ब्रजमोहन भाई जी उनको प्रसाद और आध्यात्मिक डायरी देंगे। संगीता बेनीवाल बहन जी को आदरणीय चंद्रिका दीदी जी शॉल पहना निर्मला दीदी जी शॉल पहनाएंगे और चंद्रिका दीदी प्रसाद और साहित्य देंगे। आदरणीय बहन रेनू भाटिया जी को चक्रधारी दीदी जी शॉल पहनाएंगे और शारदा दीदी प्रसाद और साहित्य देंगे।